हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सप्तमा राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवान् पर्वतो नारदो धौम्य भगवान् बादरायणः बृहदस्वा भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकाश्रितः वसिष्ठा इन्द्रप्रमदः त्रितो गृत्समदोषितः कक्षीवान् गौतमत्रिश्च कौशिकोत्थ सुदर्शनः च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलः शिष्यैरुपेता आजग्मुः कश्यपाङ्गिरसादयः तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञ देशकाल विभागवे कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पूजयामास माययोपात विग्रहं पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेमसङ्गतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रयी अन्धीभूतेन चक्षुषा अहो कष्टम् अहो न्यायम् यद्यूयम् धर्मनन्दनः जीवितुम् नार्हथ क्लिष्टम् विप्रधर्माच्युताश्रयः संस्थिते तीरथे पाण्डव पृथा बालप्रजावधुः युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तो कवती मुहुः सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च जगत्प्रियां सपालो जद्वशे लोको वायोरिव घनावलिः यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदरः कृष्णस्त्री गाण्डिवं चापम् सुहृत् कृष्णस्ततो विपद। वहाँ कुरुक्षेत्र में ब्रह्मर्षयः ब्राह्मणों में श्रेष्ठ जन सर्वे समस्त देवर्षयश्च और देवताओं में श्रेष्ठ
दृष्टाओं में देवताओं में ऋषि जन। सप्तमा हे संत शिरोमणि शौनक जी, राजर्षयश्च और राजर्षियों का समूह, पात्रा जहां भीष्म थे वहां, आसन आए, द्रष्टुम देखने के लिए, भरत पुंगवा भरत वंश में श्रेष्ठ भीष्म पितामह को, विशुद्ध गोस्वामी अब महाराज युधिष्ठिर के कुरुक्षेत्र गमन की बात कह रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर बहुत शोक में थे अपने स्वजनों के मारे जाने से और अन्य सैनिकों के मारे जाने से भी। वो ज्ञान प्राप्ति के लिए, शांति के लिए भीष्म पितामह से सुनने जा रहे हैं। तो जब ब्रह्मांड के समस्त ऋषि मुनियों ने, राजर्षियों ने सुना कि युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह से प्रवचन सुनने जा रहे हैं, तो वे सभी वहां आए। तत्र ब्रह्मर्षय सर्वे देवर्षयश्च सप्तम राजर्षयश्च तत्रासन द्रष्टुम भरत पुंगवम। भीष्म पितामह को यहाँ भरत पुंगवम कहा गया है। पुंगव का अर्थ होता है श्रेष्ठ। वास्तव में भरत वंश महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत का वंश बहुत यशस्वी है। इसी वंश में महाराज युधिष्ठिर हुए, भीष्म पितामह जैसे महान पुरुष इस वंश में हुए। इस वंश को अलंकृत किया अपने जन्म से। ये महाभागवत थे और इसके साथ ही साथ महावीर थे। पिता के प्रति इनकी ऐसी भक्ति थी कि इनके पिता ने इनसे प्रसन्न होकर इच्छा मृत्यु का वर दिया था। इसके द्वारा भीष्म पितामह के वैराग्य का पता चलता है। वह व्यक्ति निसंदेह बहुत महान है जिसके हृदय में संसार के भोगों की कामना न हो। भीष्म पितामह अभी जब किशोर अवस्था के थे, उसी समय उन्होंने जीवन में प्रतिज्ञा किया कि मैं राज्य नहीं लूंगा, विवाह नहीं करूंगा, मैं स्त्री सुख नहीं लूंगा और राज्य नहीं भोगूंगा। किस लिए? अपने पिता के सुख के लिए। उनके पिताजी एक दूसरी कन्या से विवाह करना चाहते थे, लेकिन उस कन्या के पिताजी ने कहा कि मेरी कन्या का पुत्र जो हो वो राजा होगा, तब मैं आपको अपनी कन्या अर्पित कर सकता। तो शांतनु महाराज के सामने समस्या थी, क्योंकि देवव्रत जिसे आगे चलकर भीष्म पितामह कहा गया वो उनके पुत्र थे और ज्येष्ठ थे। तो महाराज शांतनु चाहते थे कि मैं विवाह भी कर लूं, लेकिन राजा बने देवव्रत। ये दोनों बातें हो नहीं रही थी, तो वे खिन्न थे। जिस किसी तरह से देवव्रत को पता चला कि हमारे पिताजी सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन मैं उसमें बाधक हो रहा, तो वे अपने आप पिताजी के पास गए और कहे कि पिताजी, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं राज्य नहीं लूंगा, आप जिससे विवाह करना चाहते हैं कीजिए, और उस मां से जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा, मैं राज नहीं लूंगा। इस तरह से त्याग करना पूरे राज्य का, ये सामान्य बात नहीं है। आज के युग में 5 वर्ष के लिए, और वह भी एक खंड राज्य। राज्य क्या है? हेडेक है, विधायक बनना, सांसद बनना, लेकिन उसके लिए लोग कितना पैसा खर्च करते हैं, लड़ते हैं, ये भोगों में कोई वैराग्य नहीं। भीष्म पितामह कैसे व्यक्ति थे जो पूरे विश्व का साम्राज्य अपने पिता के सुख के लिए छोड़? ठीक है, आप विवाह कीजिए, मैं विवाह नहीं करूंगा और मैं राज्य नहीं लूंगा। विवाह नहीं करूंगा, इसके पीछे उनकी प्रतिज्ञा का आशय यह था कि हो सकता है कि मैं विवाह करूं और आगे चलकर मेरा पुत्र यह क्लेम करे कि हमारे पिताजी का राज्य है वास्तव में, इसलिए वे अखंड ब्रह्मचारी रहने का व्रत ले लिए। तो उनके इस व्रत से प्रसन्न होकर पिता ने आशीर्वाद दिया, संतनु महाराज ने आशीर्वाद दिया कि पुत्र चिरंजीवी रहो, जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक साक्षात काल भी तुमको मार नहीं सकता है, जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान कहते हैं। जब तक वे नहीं चाहते तब तक कोई नहीं मार सकता था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने इच्छा कर लिया कि मैं मरूं, तो उनकी मृत्यु हुई। तो इस प्रकार जिसके व्यवहार से पिता इतने प्रसन्न थे, तो उन्होंने इच्छा मृत्यु का वर दे दिया। शांतनु महाराज बहुत महान पुरुष थे। संतनु या शांतनु उनको कहते हैं। सम का अर्थ होता है सुख शांति और तनु का अर्थ है विस्तार करने वाला। शांतनु महाराज अपने हाथ से जिसको छू देते थे उसका सारा दुख दूर हो जाता था किसी भी तरह का, इसलिए उनका नाम शांतनु पड़ा। इसलिए भागवत के नवम स्कंध में यह बात लिखी गई शांतनु। और ऐसे महान राजा के पुत्र थे भीष्म पितामह। इतना बड़ा राजकुमार होने के बाद भी संसार के ऐश्वर्य और भोगों को भोगने को उनकी कोई लालसा नहीं, जबकि उत्तराधिकार में वो उनका हक था, स्वयं त्याग किए थे। और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, महान ज्ञानी थे, महान धनुर्धर थे, जिन्होंने भगवान परशुराम जी के साथ भी युद्ध किया था। और कौरव पक्ष से 10 दिनों तक सेनापति के पद पर रहे। महाराज युधिष्ठिर को इन्होंने अपने मरने का स्वयं ही उपाय बता दिया कि ऐसे मैं मर सकता हूं। जब महाराज युधिष्ठिर प्रणाम करने गए युद्ध के प्रारंभ में, तो भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया, बेटा तुम्हारी विजय हो, लड़ रहे हैं कौरव के पक्ष से और आशीर्वाद दे रहे हैं युधिष्ठिर को। और सबके सामने दुर्योधन आदि सुन रहे थे। तो महाराज ने पूछा, युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि पितामह आपके रहते मेरी कैसे विजय हो सकती है? तो उन्होंने अपने मरने का उपाय बताया, कहा कि बेटा मैंने जीवन में शपथ लिया है कि मेरे सामने यदि कोई स्त्री खड़ी हो जाए तो मैं युद्ध नहीं करूंगा और उस समय कोई वीर मुझे मार सकता है, ये उपाय बताया। तो वही अंबा जिसका वे अपहरण करके लाए थे काशी से, बाद में वो तप करके शिखंडी के रूप में जन्म ली। तो शिखंडी आया 10वें दिन, खड़ा हो गया भीष्म पितामह के सामने। भीष्म पितामह जानते थे कि यह अंबा है, इसलिए वे आयुध चलाते नहीं थे। उसी समय अर्जुन उन्हें मारकर धराशायी किए, भगवान की इच्छा से उनको गिराए गए। बाण सज्जा पर पड़े थे कुरुक्षेत्र में, कोई पास में नहीं था, केवल अंधकार अंधकार और कुछ लाशें पड़ी थी आसपास। महाभारत में वर्णन है कि भीष्म पितामह कभी कभी सुनते थे सियार लाश खाते थे, हुआ हुआ करते थे पास में। और महाराज युधिष्ठिर इसलिए हस्तिनापुर आ गए तुरंत युद्ध के बाद कि उन्हें अपनी माता गंधारी को संतोना देनी थी। गंधारी 100 पुत्रों को खो चुकी इस युद्ध में, इसलिए बहुत दुखनी थी। और महाराज धृतराष्ट्र इन लोगों को सांत्वना देने के लिए भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज आदि सब आ गए थे हस्तिनापुर। और जब लोग हस्तिनापुर आए थे तो भीष्म पितामह उसी भयंकर युद्ध स्थल में पड़े हुए थे, लेकिन पड़े पड़े वे भगवान श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण करते थे और भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से इनका स्मरण करते थे। एक दिन ध्यान कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ध्यान कर रहे थे, हमारा युधिष्ठिर ने पूछा कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं? सारा विश्व यहाँ तक ब्रह्मा शिवादि देवगण आपका ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तो भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्त भीष्म पितामह का ध्यान कर रहा हूं। इस तरह उन्होंने कहा। तो इतने बड़े भक्त थे, ज्ञानी थे, और यहां पर उनके ज्ञान का प्रमाण मिलता है। जब ब्रह्मांड में यह समाचार फैला कि भीष्म पितामह प्रवचन करने वाले हैं, तो उनके प्रवचन को सुनने के लिए देवर्षि, राजर्षि और ब्रह्मर्षि सभी आए अपने अनुयायियों के साथ, अपने शिष्यों के साथ। तो उनमें से कुछ के नाम यहाँ गिनाए जा रहे हैं। पर्वतो नारदो धौम्य, पर्वत मुनि नारद जी धौम्य उनके पुरोहित, उनके गुरु महाराज युधिष्ठिर के, और भगवान बादरायण समस्त वैदिक साहित्य को प्रकाशित करने वाले विश्व गुरु व्यास देव भीष्म से सुनने के लिए आए। ऐसे व्यास देव भीष्म पितामह के भाई लगते थे एक नाते से, वे सत्यवती के पुत्र थे, विवाह से पहले इनका जन्म हुआ था पराशर जी से, और कौरव कुल में ये पांडवों के साथ इनका बहुत गहरा संबंध था, देह का संबंध था। यद्यपि भगवान वेदव्यास देव ब्राह्मण हैं और महाराज युधिष्ठिर या भीष्म पितामह क्षत्रिय, लेकिन फिर भी एक दैहिक संबंध था। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं ईश्वर की इच्छा से जिसे सामान्य लोग नहीं समझ सकते। तो भगवान वेदव्यास देव जो सबके गुरु हैं, तो सारा वैदिक साहित्य, उपनिषद, पुराण, महाभारत, वेदांत सूत्र सबके रचयिता हैं, वे भीष्म पितामह का प्रवचन सुनने के लिए आए। और प्रवचन में मुख्य बात थी भगवान श्री कृष्ण के प्रति भीष्म देव की भक्ति। तो उस प्रेम और भक्ति में भीष्म पितामह किस तरह बोलेंगे, उन उद्गारों को सुनना आवश्यक था। तो भगवान वेदव्यास देव आए और बृहदस्व, भरद्वाज मुनि, ये सभी लोग अपने अपने शिष्यों के साथ आए, और रेणुका सुत भगवान परशुराम जी भी आए। परशुराम जी भी गुरु थे भीष्म पितामह के, धनुर्विद्या में गुरु थे, उन्होंने सिखाया था भीष्म पितामह को युद्ध कला। लेकिन भगवान भी, श्री परशुराम जी भी भक्ति सीखने के लिए आए इनके पास, भीष्म पितामह के पास। वे तप करते थे, धनुर्विद्या में सबसे श्रेष्ठ थे, राम शस्त्र घृतामह। इसका अर्थ यह भी हो सकता है परशुराम जी, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। इतने बड़े हैं वे, लेकिन फिर भी जो भक्ति किया भीष्म पितामह ने, वह बहुत विरल है वास्तव में। जब कहते हैं कि पार्थ सारथी में मेरी प्रीति हो, जिनके केश घोड़ों की टाप से उड़ी हुई रज से धुमिल हैं, और जिनके मुख पर पसीने की बूंदे हैं, हाथ में चाबुक है दाहिने हाथ में, बाएं में घोड़ों की रास, और मुंह पर हूं हूं आ आ ये जो शब्द है, इस तरह के कृष्ण में मेरी प्रीति हो, मैं जन्म जन्म में उन्हीं का दास बनूं, तो इस तरह का भाव बहुत दुर्लभ था। इन्हीं भावों को सुनने के लिए भगवान परशुराम आए, और इसके साथ ही साथ वशिष्ठ मुनि एक परम प्रसिद्ध मुनि हैं, बहुत दीर्घजीवी हैं। जितने लोगों का नाम यहाँ गिनाया जा रहा है सभी आज भी हैं, आज भी अपने अपने आश्रम में हैं, अपने अपने लोक में हैं। ये जरूरी नहीं है कि केवल इसी पृथ्वी पर और बॉम्बे के आसपास सब रहा है, पूरे ब्रह्मांड से आए थे। कश्यप जी आए जो स्वर्ग में रहते हैं, देवगुरु बृहस्पति जी आए। मैं सवेरे कहा था कि ये ऋषि मुनि अपने जीवन में जो प्राप्तव्य विषय है भगवान कृष्ण की भक्ति और ज्ञान, उसको पाने में फिर मान सम्मान का ध्यान नहीं रखते थे। कभी नहीं सोचे देवगुरु बृहस्पति जी कि मैं एक मनुष्य से सुनूंगा और वो भी एक क्षत्रिय से। हिचके नहीं, उनके मन में कोई हिचकिचाहट नहीं। चाणक्य पंडित ने कहा है कि सोना अगर कीचड़ में पड़ा है फिर भी हम उसे ले लेते हैं, है ना, घृणा नहीं करते। और उन्होंने कहा है कि इसी तरह से कोई कन्या बहुत गुणवती हो तो वह छोटे कुल में जन्म ली हो फिर भी उसके साथ विवाह करना चाहिए, इस तरह से वो कहते हैं। और स्वर्ण यदि गंदे जगह में भी पड़ा है या बहुत पापी के पास भी है, दुराचारी के पास भी उसके घर में है, तो उसे भी लिया जा सकता है। तो इस प्रकार जब इन प्राकृत वस्तुओं की इतनी कीमत होती है, इसके लिए कोई और विचार नहीं किया जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण के विषय में दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए और क्या मैटेरियल कंसिडरेशन करना है। या हा वह है, मैं कैसे वहां बैठूंगा, कैसे सुनूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ये सब विचार ऋषियों ने नहीं किया। और ऐसा विचार होता तो उस युद्ध क्षेत्र में जहां अभी अभी ब्लड गिरे होंगे, खून गिरे होंगे, और सब लोग उस स्थान पर जाकर के बैठ करके क्षत्रिय से सुनना, और वो अभी क्षत्रिय कोई बैठ करके प्रमोशन नहीं करने वाले थे, वो बाण सज्जा पर थे, गिरे हुए थे, और उनसे सुनने के लिए गए। जो कुछ भी हो, जैसे नीति शास्त्र कहता है कि राजा नहीं, वैद्य और गुरु और मंत्री, ये जितना बूढ़े होते हैं उतना ही अच्छा होते हैं, और सन्यासी जितना बूढ़े होते जाते हैं उतना अच्छे होते जाते हैं, और गायक, वेश्या, पहलवान, ये लोग जितना बूढ़े होते जाते हैं उतना ही गायब होते जाते हैं, शरीर खराब होता जाता है, ऐसा लिखा गया। तो जो प्रवचन करने वाले हैं और यदि वे गुरु हों, आचार्य हों, तो यदि वे अधिक आयु के हों तो अच्छा है। यदि आज के दो दिन के लड़के को बना दीजिए गुरु और कुछ न कुछ गड़बड़ी करके रखते हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ी का समाचार आना ही है। और कोई उसको कह दे गुरु है, गुरु है, गुरु है, तो गुरु कहने से तो होगा नहीं, तो बहुत दिन तक सीखना पड़ता है, बहुत दिन साधना करनी पड़ती है, साधना करके परिपक्व आदमी होता है, जब सांसारिक वासनाएं उसकी बिल्कुल निरस्त हो जाती है, तो भगवान के प्रेम में मस्त रहता है, वह व्यक्ति वास्तव में गुरु तो कर सकता है। तो भीष्म पितामह 400 वर्ष के थे जिस समय उनकी मृत्यु हुई, और आपने सुना कि जब महाराज युधिष्ठिर ने देखा भीष्म को तो ऐसा लगा जैसे देवता आकाश से, स्वर्ग से गिरे हो। उस उम्र में भी वे इतना सुंदर थे, उनका शरीर इतना तेजस्वी था, क्योंकि वे अखंड ब्रह्मचारी थे, बहुत सुंदर उनका देह था। यही कारण है कि शुद्ध गोस्वामी उनकी उपमा दे रहे थे, दिवस च्योतन इव अमरम, जैसे अमर स्वर्ग से गिरा हो ऐसा लग रहे थे। एक तो वे वृद्ध थे, गुरु वृद्धा पितामह, और बाण सज्जा पर पड़े थे, कई दिन से खाए नहीं थे, युद्ध करके थके थे, गिरे थे, उस समय भी वे ग्लोरियस थे, चमक रहे थे, यह उनकी भावना थी। वास्तविक बात ये थी कि भीष्म पितामह के हृदय में पार्थ सारथी हमेशा जगमगा रहे थे। युद्ध में जो उन्होंने कृष्ण को देखा था रथ हाँकते हुए, वह छवि उन्हें एक सेकंड भी नहीं भूल पाती थी। उन्हें भान ही नहीं था कि मैं बाण सज्जा पर हूँ, कुरुक्षेत्र में हूँ या कहाँ, निरंतर उसी का चिंतन कर रहे थे। और उनकी हार्दिक इच्छा थी कि वे हमारे आंखों के सामने आ जाएं, तो उनको देखते हुए मैं शरीर त्यागूंगा। तो भक्त के हृदय की भावना भगवान जानते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज के हृदय में अज्ञान भर करके उनके बहाने में गए। ये सब ऋषि मुनि आ रहे हैं सभी अपने अपने शिष्यों के साथ, और असित मुनि का नाम भगवद गीता में आया है, जो कृष्ण तत्व को जानते हैं। देवलो असितो व्यास, भगवान स्वयं कहते हैं, नहीं अर्जुन कहते हैं कि असित मुनि आपके विषय में कहा करते हैं कि आप परब्रह्म हैं, आप भगवान हैं। असित मुनि हस्तिनापुर आया करते थे और वे प्रवचन करते थे कृष्ण के विषय में। तो अर्जुन ने कहा है गीता में कि असित कहते हैं, देवल कहते हैं, भगवान वेदव्यास देव कहते हैं, क्या परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभु आहुस्तम ऋषय सर्वे। आपके विषय में सभी ऋषियों ने आज तक यही कहा, जिसे मैं मिला जिसका सुना, सभी यही कहते हैं कृष्ण परब्रह्म है, परम धाम है, परम पवित्र है और सनातन पुरुष है, सभी यही कहते हैं। आहुस्तम ऋषय सर्वे, उसमें से नाम रख रहे हैं देवर्षि नारदस्तता असितो देवलो व्यास और स्वयं चैव ब्रवीषि, और आप स्वयं भी बता रहे हैं। भगवान ने कहा अहम सर्वस्य प्रभवो मत्वा सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वित, मैं सबको जन्म दिया हूँ और सबका पालन करता हूँ, यह मान करके विद्वान लोग मेरा भजन करते हैं। और अपने बारे में भगवान ने बहुत बहुत बताया तो अर्जुन उसको स्वीकार करते हैं। जैसा आप कहते हैं अपने विषय में स्वयं च एव ब्रवीषि, जैसे आप अपने विषय में स्वयं बोलते हैं, ऐसा ही मैं समस्त ऋषियों के मुख से आपके विषय में सुना। और अर्जुन इतने बड़े पुरुष थे, महान थे, कि समस्त समाज को भी अटेंड किए थे, इसी देह से स्वर्ग में गए थे, और स्वर्ग में देवताओं की सभा में कृष्ण के विषय में क्या क्या बात होती थी उसे भी सुने थे। भगवान वेदव्यास देव के तो पौत्र ही थे। तो इस तरह से बहुत निकट का संबंध था ऋषियों से, प्रचुर संग किया था अर्जुन ने और पांडवों ने ऋषि मुनियों का। 13 वर्ष तक वन में रहे थे तो प्रायः ऋषि मुनि के पास बैठकर इस तरह सत्संग किया करते थे, और ऋषि मुनि सब भगवान के विषय में बताया करते थे, कृष्ण के विषय में कि वे ये हैं वो हैं। तो अर्जुन कहते हैं आहुष्टाम ऋषय सर्वे, सर्वे ऋषय, आपके विषय में सभी ऋषि ऐसे कहते हैं, कोई भी ऋषि ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि कृष्ण भगवान नहीं, सभी ऐसा कहते। तो सर्वम एतद ऋतम मन्ने जन्मां वदसि केशव, हे केशव आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं सर्वम ऋतम मन्ने, मैं बिल्कुल सत्य मानता हूं, मुझे कोई संदेह नहीं है, मैं सत्य मानता हूं। तो इस तरह के विचार कृष्ण के विषय में वास्तव में भीष्म पितामह के मुख से निकलेगा, इसी को सुनने के लिए ऋषि लोग जुट रहे। तो असित मुनि का नाम भगवद गीता में है, कृष्ण तत्व को जानने वालों में कक्षीवान गौतम अत्रि कौशिक सुदर्शन सुखदेव गोस्वामी आदि कश्यप मुनि और बृहस्पति जी। कश्यपांगी दशा दिया इसलिए कहा गया है, कश्यप जी और बृहस्पति ये सब एक साथ आए हैं, कुछ ग्रुप है, स्वर्ग से आने वालों का एक ग्रुप है और इधर उधर से आने वालों का अपना अपना ग्रुप है। तो अपने अपने शिष्यों के साथ अनुगामियों के साथ आ रहे हैं। अपने शिष्यों के साथ क्यों आ रहे हैं, गुरुजन यह सोचते हैं कि हमारे शिष्यों को भी यह परम लाभ मिलना चाहिए, ये परम लाभ उनको मिलना चाहिए, यह गुरु का धर्म है। वास्तव में जैसे पिता अपने पुत्र को भेजता है पढ़ने के लिए कॉलेज में विश्वविद्यालय में भेजता है जाओ पढ़ करके आओ, तो उसी तरह से गुरु का धर्म है उसको भेजना चाहिए शिष्य को कि जाओ यहाँ सुन करके आओ, यहाँ पढ़ करके आओ, ये करके आओ। ऐसा नहीं मैं तुम्हारा गुरु हूं इसलिए तुम कहीं मत सुनो, तुम मूर्ख बन करके मेरे आश्रम में रहो क्योंकि तुम मेरे शिष्य। मैंने स्टैंप डाल दिया है, इसलिए यहीं पर बोका बन कर रहा। सब जगह यही भावना प्रचलित हो गई है और यह शिष्यों के प्रति स्नेह का अभाव सूचित करता है। कोई भी पिता कभी ये सोचेगा कि हमारा बेटा मूर्ख रहे लेकिन हमारे घर में रहे, वो स्वयं पैसा देता है, भेजता है, जाओ 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 पढ़ो, दूर पढ़ने के लिए भेजता है। यह स्नेह का सूचक। यदि रियली शिष्यों के प्रति स्नेह होगा तो गुरु उनके विकास के लिए भेजेगा अधिकारियों के पास, दूसरे के पास सुनने के लिए, केवल अपने पास ही नहीं रखेगा। तो शिष्यों के साथ ये सभी ऋषि मुनि आए, विश्व के सबसे बड़े बड़े लोग, और सुखदेव गोस्वामी वहां आए सुनने के लिए। और जब सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे उस समय भी वशिष्ठ जी आएंगे, वेदव्यास देव, पर्वत, नारद आदि सब आएंगे। वेदव्यास देव के गुरु हैं नारद जी और वेदव्यास देव गुरु हैं सुखदेव गोस्वामी, लेकिन वे लोग भी अपने शिष्य की कथा सुनने आए। ये भागवत में लिखा गया है प्रथम स्कंद में। तो इस प्रकार बहुत बड़ा समाज जुटा। तान समेतान महाभागान उपलब्ध वसुत्तम पूजया मास धर्मज्ञ देश काल विभाग। तो उन महाभाग्यवान, महाज्ञानी, महान भगवत भक्त मुनियों को अपने पास आया हुआ देखकर वसुत्तम वसुओं में उत्तम भीष्म पितामह ने उनका स्वागत किया। ये बाण सज्जा पर थे, उठ नहीं सकते थे, उठ करके किसी को प्रणाम नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पूजया मास पूजा किया उनकी। धर्मज्ञ, धर्म जानते हैं, धर्मज्ञ का अर्थ है जो धर्म को जानता है। भिन्न देश में और भिन्न काल में क्या कर्तव्य होता है मनुष्य का, भीष्म पितामह जानते थे। तो वह देश भिन्न था, भीष्म पितामह का अपना घर नहीं था वहां कुरुक्षेत्र में। यदि अपने घर में होते तो इन ऋषियों के चरण धोते, उनका स्वागत करते, उन्हें आसन देते, खिलाते पिलाते, लेकिन वे विषम देश में थे, युद्धस्थल में थे, और काल भी दूसरा था, लेकिन फिर भी देश काल विभाग वित्त, देश और काल के अनुसार उन्होंने सबकी पूजा किया, सबका सम्मान किया। ऐसे हाथ भी नहीं जोड़ सकते थे, हाथ भी ऐसे बाणों से ही बिंधे थे, लेकिन वे हंसते थे और कुछ मस्तक झुकाने जैसा करते थे। मस्तक झुकने का प्रश्न नहीं था, वो तो ऐसे सोए थे और उनको निकट से आकर के सब ऋषि मुनि प्रणाम कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे उनको। लेकिन भीष्म पितामह अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को नहीं भूल पाए, वे सबको प्रणाम किए, क्योंकि वास्तव में सभी उनके पूज्य थे। नारद मुनि, भगवान वेदव्यास देव तो कहना ही नहीं, समस्त ऋषि मुनि, भगवान परशुराम, सभी आते थे भेंट करने के लिए, देखते थे, तो सबका उन्होंने सम्मान किया। देश काल के अनुसार किया जाता है। मान लीजिए आप ऐसे जगह पर हैं, आपके पास एक पैसा भी नहीं है, आपके पास पानी भी नहीं है किसी को देने के लिए, लेकिन कोई अतिथि आ गया, कोई साधु महात्मा आया, केवल सुंदर वचन बोला जाए उसको अभी एक बहुत बड़ी पूजा हो गई। आइए आइए, आपका स्वागत है, बैठिए, कैसे हैं। इस तरह से मीठा वचन आदमी बोले तो यह भी पूजा है। ऋषि मुनि इसकी अपेक्षा नहीं करते थे कि भीष्म पितामह उठ करके हमें दंडवत करें या हमें पानी दें या हमें भोजन कराने, क्योंकि देख ही रहे थे सब लोग ये भिन्न देश में है, भिन्न काल में है। तो इसको देश काल विभाग कहते, प्रत्येक व्यक्ति का धर्म, उसका कर्तव्य देश और काल से थोड़ा थोड़ा भिन्न हो जाता है। अपने घर में कोई है, किसी महान पुरुष से भेंट हो गई तो उसको खिलाएगा पिलाएगा, स्वागत करेगा, लेकिन वही साधु उसके ट्रेन के डिब्बा में मिल जाए उस समय तो वो दूसरे तरह से स्वागत करेगा, कुछ वार्ता होगी, कुछ प्रश्न होंगे, ये होगा, लेकिन घर उठा करके तो डिब्बे में रखा नहीं है, तो वो भिन्न देश है। परंतु देश काल के अनुसार व्यवहार करने में भीष्म पितामह पटु थे, उन सब ऋषि मुनियों का स्वागत उन्होंने किया था राजसूय सभा में, जब उनके घर पर लोग आए थे उस समय पूजा किए थे सब, लेकिन आज उठ ही नहीं सकते थे, केवल वाणी उनके पास थी और नेत्र देखते थे और वाणी से कहते थे नमस्कार है आइए, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ लेकिन वो तो हाथ जोड़ नहीं सकते थे, तो कहते थे बहुत आनंद के साथ मेरा भाग्य है कि आप आए, आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम है, यही स्वागत था उनका, और इसी से ऋषि मुनि तृप्त हो जाते थे। ये तो अपना भाग्य मान करके आए थे इनका दर्शन करने के लिए, लेकिन भीष्म पितामह अपना अहो भाग्य मानते थे उनका दर्शन करके। इस तरह से परस्पर संबंध होता है। तान समेतां, समेतां का अर्थ आए हुए, कुरुक्षेत्र में आए हुए उन महान तेजस्वी ऋषि मुनियों का भी स्वागत किए। यह देश काल विभाग भी बहुत सुंदर, प्रेम से अनुकूल भाव से किसी पर देखना भी उसका बहुत बड़ा सम्मान है, अनुकूल भाव से देखा जाए तो बहुत बड़ा सम्मान। मछली अपने अंडे को देख करके पोस देती है, केवल स्नेह से देखती है और अंडा बढ़ता है, और पक्षी अपने पंख की छाया से अंडे को बढ़ा देते हैं, अंडे के भीतर कुछ भी डालते नहीं है, बाहर से ही केवल पंख की छाया से सहला करके और बढ़ा देते हैं। और कछुआ केवल चिंतन से ध्यान से अपने अंडे को पोष देता है, इतना बड़ा प्रभाव होता है चिंतन का, मानसिक शक्ति का, वाणी का और नेत्र का। कोई आवश्यक नहीं है कि बहुत बड़ा धन हो हमारे पास तब हम बहुत स्वागत करेंगे, जो एसेट भगवान ने दिया है जिस स्थिति में है उसी स्थिति से महापुरुषों का स्वागत करना चाहिए, तो भीष्म पितामह ने किया, देख रहे थे बहुत श्रद्धा से और बोल रहे थे, इस तरह उन्होंने स्वागत किया। जब समस्त ऋषि मुनियों का इस तरह सम्मान किया उन्होंने, और भगवान कृष्ण के लिए स्पेशल पूजा किया, तो इसके लिए एक श्लोक में कहते हैं कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ आसीनम जगदीश्वरम हृदिष्ठम पूजयामास मायोपात विग्रहम। कृष्णम च, और कृष्ण को उन्होंने पूजया मास, वहां से संबंध है, या आगे भी पूजया मास, पहले श्लोक में पूजया मास पूजा किए और दूसरे श्लोक में भी पूजया मास पूजा किए, कृष्ण की स्पेशल पूजा किए। कैसे? हृदिष्ठम, हृदय में ध्यान करके षोडशोपचार से पूजा किए, मानसिक पूजा की, 16 प्रकार की पूजा की जाती है, मन में ध्यान करके पूजा करने लगे और बाहर नेत्रों से देख कर पूजा कर रहे थे। जैसे भीष्म पितामह ऐसे लेटे हुए थे तो वे बहुत दूर तक सब जगह देख नहीं सकते थे, यहां तक शीर में बाण लगे थे तो ऐसे भी नहीं कर सकते थे, ऐसे नहीं कर सकते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कृपा करके उनके चरण के पास ही निकट बैठे थे जहां उनकी दृष्टि जा रही थी। आसीनम, भगवान निकट बैठ गए थे। पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के चरणों के पास बैठे थे। आसीनम कौन है? कृष्ण जगत ईश्वरम, संपूर्ण जीवों के, ब्रह्मादि देवताओं के भी ईश्वर हैं भगवान कृष्ण। तो भीष्म पितामह ने देखा माया उपात विग्रहम, माया कृपा को कहते हैं संस्कृत में, दंभ या कृपा, यह कृपा अर्थ है, जो कृपा करके अपने श्री विग्रह को इतने निकट लाए थे। भीष्म पितामह ये सोच रहे हैं कि प्रभु कृपा करके आए हैं, मैं तो चल नहीं सकता था, मैं तो इस कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में गिरा हूं। माया उपात विग्रह, भगवान वास्तव में कृपा करके उनके पास आए थे, भीष्म पितामह अनुभव कर रहे हैं और सोच रहे ओहो मेरा आज ऐसा दुर्दिन है कि मैं इस कुरुक्षेत्र के जघन्य स्थल में युद्ध क्षेत्र में पड़ा हूं, मेरी शक्ति नहीं थी कि मैं जाकर हस्तिनापुर अपने प्रभु का दर्शन करूं, उनसे बात करूं, लेकिन कोई न कोई बहाना करके देखो वे स्वयं आ गए मेरे पास। इसको कहते हैं माया उप आत विग्रह, उप माने निकट, आत माने लाया हुआ, विग्रह माने सुंदर स्वरूप। इतना सुंदर हमारे प्रियतम भगवान स्वयं आए मेरे पास, जिसकी बहुत लालसा थी भीष्म पितामह को, कितना भी दुखी होंगे कुरुक्षेत्र में पड़े हैं और कृष्ण हस्तिनापुर में, चाहने के बाद उठकर जा नहीं सकते थे, तो भगवान स्वयं आए। उन्होंने देखा कि हमारे भतीजे पांडु के पांचों पुत्र हमारे पास बैठे हैं, भीष्म पितामह ने देखा कि वे प्रश्रय और प्रेम से चुक्त है, पांडु पुत्रान उपासीनान प्रश्रय प्रेम संगतान। भीष्म पितामह ने देखा पांडु पुत्र बैठे हैं मेरे बिल्कुल निकट, मतलब युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन नकुल और सहदेव, और पांचों भाई अपने पितामह की इस दशा से बहुत दुखी थे, और उसमें कारण वे लोग हैं, अर्जुन ने तो स्वयं धराशायी किया था भीष्म पितामह को, तो उस दशा में उन्हें बहुत दुख हो रहा था, तो हमें जो गोद में खिलाए, हमारा पालन किए हमारे पितामह, हमने उनको इस दशा में पहुंचा दिया, तो इसका उन्हें बहुत कष्ट था और हृदय से प्रेम था भीष्म पितामह के प्रति उनका, और नम्रता थी प्रश्रय, प्रश्रय का अर्थ है नम्रता, विनय, विनय से झुके हुए थे, बैठे हुए थे, बहुत संकोच में थे, जिसको युद्ध क्षेत्र में धराशायी किए हैं, गिराए हैं, बाण मारे हैं, शरीर के अंग अंग में बाण मारा गया था, उसी से कुछ सीखने के लिए आए। तो इस बात से महाराज युधिष्ठिर को बड़ा कष्ट हो रहा था मन ही में, तो लोग और दुखी थे। भीष्म पितामह अपने पौत्रों को युधिष्ठिर आदि को अभ्याचष्ट देखे, अभी आचष्ट, आचष्ट का अर्थ होता है देखना और बोलना दोनों, तो अभ्याचष्ट का अर्थ है वो देखे, कैसे नेत्रों से देखे, अनुराग आश्रय अंधीभूत न चक्षुषा, अनुराग के आंसुओं से भीष्म पितामह की आंखें भर आई थी, ये अच्छी तरह से पांडवों को नहीं देख रहे थे लेकिन अपने पौत्रों को देखे, तो भीष्म पितामह अपने दुख को भूल गए, उन्हें अपने दुख का स्मरण नहीं रहा, युधिष्ठिर आदि अपने पौत्रों के दुख का उन्हें स्मरण आने लगा कि ये जीवन भर केवल दुख भोगे, इनको सताया गया, क्योंकि भीष्म पितामह सब जानते थे किस तरह भीम को विष दिया गया, लक्ष्य भवन में उनको जलाने का प्रयास किया गया, द्रौपदी को अपमानित किया गया, फिर राज्य त्याग दिए, राज छीन लिया गया, वन में गए, क्या क्या कैसे कैसे, और विशेष करके भीष्म पितामह को अपने पुत्र वधु प्रिथा की याद आ रही थी, प्रिथा ने कितना कष्ट सहा है, इसका स्मरण करके उनके आंखों में आंसू चल बह रहे थे। तो अनुराग आश्रय, अस्त्र मने आंसू, अनुराग के आंसुओं से अंधीभूत न चक्षुषा, उनकी आंखें अंधी हो गई थी, अंधी का अर्थ मतलब पानी भर जाने से देख नहीं रहे थे, और इस दशा में पांडवों को देखने का प्रयास कर रहे थे और इस प्रकार बोले, स्नेह उमड़ आया। भीष्म पितामह सोच रहे हैं कि आज इनको राज्य मिला इतने वर्षों के बाद, तो उस समय ये हमारे दशा पर शोक प्रकट कर रहे हैं या द्रोणाचार्य को मार दिए इस पर शोक प्रकट कर रहे हैं, इनके स्वजन मारे गए। भीष्म पितामह अपने पौत्रों के हृदय को पढ़ लिए, जानते हैं कि बहुत संकोच में हैं और खास करके मैं जो इस दशा में गिरा हुआ हूं इसलिए इनको बहुत दुख है मन में, और उनके पूर्व दुख का स्मरण करके बहुत अनुराग उत्पन्न हुआ। देखिए सूत जी कैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, पांडवों के लिए प्रेम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और भीष्म पितामह के लिए अनुराग शब्द का। पांडवों का अपने दादा से रियली प्रेम है, बहुत घनिष्ठ प्रेम था, और भीष्म पितामह का उनमें अनुराग था। यदि अनुराग नहीं होता तो वे अपनी मृत्यु का उपाय स्वयं युधिष्ठिर महाराज को नहीं बताते। कई ऐसा अवसर आया युद्ध में जबकि भीष्म पितामह वास्तव में बहुत ढिलाई से लड़ते थे, वे अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते थे। एक दिन दुर्योधन आकर के रोने लगा इनके पास, कहने लगा कि दादाजी आप बुरा नहीं मानेंगे, सब तरह से मैं आपका पालन कर रहा हूं, मतलब साफ कहा कि मैं आपको खिला रहा हूं पिला रहा हूं, आपको भवन दिया हूं सब कुछ दिया हूं, लेकिन आप लड़ तो रहे हैं हमारे तरफ से लेकिन आपका हृदय लड़ नहीं रहा है। मैं देखता हूं कि अर्जुन के साथ आप जब युद्ध करते हैं तो ये नहीं भूल पाए हैं कि अर्जुन आपका पौत्र है, जब यही करना था तो आप लोग युद्ध करने के लिए क्यों नहीं मना कर दिए हमको, वो अंततः हमें हारना ही था, ये मैं जान गया होता तो आप लोगों को भरोसा नहीं किया होता। इस पर भीष्म के काम क्रोधित हो गए, तुम कुछ भी कहो, बड़ा दुख हुआ, उन्हीं का राज्य था वास्तव में भीष्म का, लेकिन उन्होंने लिया नहीं था, त्याग दिया था स्वेच्छा से, और फिर ये लोग उत्तराधिकारी बने थे, विचित्र वीर्य महाराज के बाद धृतराष्ट्र पांडु विदुर ये सब उनके पुत्र हुए, और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, पांडु के पुत्र युधिष्ठिर आदि हुए, इनका छोड़ा हुआ राज्य लोग भोग रहे थे, और वो कहता है कि मैं आपको खिला रहा मैं आपको पोष रहा हूं, आप ठीक से लड़ नहीं रहे। तो भीष्म पितामह ने कहा कि मुझे जैसे लड़ना है मैं लड़ रहा हूं, देह तुम्हारा है हृदय युधिष्ठिर का है, ऐसा उन्होंने स्पष्ट कहा, कपट नहीं करते थे, मेरा मन युधिष्ठिर के साथ है, देह तुम्हारी ओर से लड़ रहा है, लड़ेगा जो कुछ भी करना होगा, लेकिन तुम ये चाहते हो कि मैं हृदय भी तुमको दे दूं तो ये नहीं हो सकता, कभी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी वो बहुत रोने लगा, बाद में अफसोस किया कि मैं गलती की आपसे ऐसी बात कह दिया, लेकिन मैं तो आप पर भरोसा किया था, ये किया था वो किया था। तो भीष्म पितामह ने कहा कि दुर्योधन तुम नहीं जानते हो क्यों अर्जुन जीत रहा है या पांडव क्यों जीत रहे हैं, भगवान उनके साथ हैं, कोई भी शक्ति अर्जुन को परास्त नहीं कर सकती, मुझमें कुछ भी नहीं है अर्जुन के आगे बल, तुम समझ नहीं रहे हो, मैं कई बार पहले तुमको रोका था कि युद्ध मत करो ये मत करो वो मत करो, लेकिन तुम कर्ण के भरोसे युद्ध किए, कर्ण को डांटा था भीष्म पितामह ने कि तुम्हारे चलते यह उदंड हो रहा है, तो कर्ण में और भीष्म पितामह में बहुत तनाव हो गया, झगड़ा हो गया। भीष्म पितामह ने यहां तक कह दिया अरे चंडाल सी क्या बात करते, तो भीष्म पितामह में और कर्ण में जब झगड़ा हो गया तो कर्ण यहां तक कह दिया कि ठीक है जब तक आप लड़ेंगे मैं नहीं लड़ूंगा, दिखाइए अपना बल, समझाता रह गया दुर्योधन कि नहीं नहीं कोई बात नहीं सहो सहो, लेकिन वो बहुत जिद्दी था कर्ण, 10 दिन तक वो केवल आराम किया वो युद्ध नहीं किया, यह भगवान का ट्रिक था, नहीं तो अर्जुन कर्ण के साथ लड़ते कि भीष्म के साथ लड़ते, किसी एक के साथ लड़ना था, 10 दिन तक वो युद्ध नहीं किया।
ग्यारहवें दिन आकर भीष्म पितामह से आज्ञा मांगा कि अब आज्ञा दीजिए, मैं युद्ध करना चाहता हूँ। भीष्म पितामह ने कहा ठीक है जाओ लड़ो, लेकिन तुमने बर्बाद किया है दुर्योधन को। वे बारम्बार इस बात को कहते थे। तो जब दुर्योधन रोने लगा युद्ध में शिविर में रात के समय, तब उन्होंने एक प्रतिज्ञा किया। यह प्रतिज्ञा किया कि देखो पांचों पांडवों में से, नहीं अर्जुन को उन्होंने कहा, कल युद्ध में अर्जुन मरेंगे और नहीं तो कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा छोड़नी होगी, दोनों में एक होगा। वो जानते थे कि भगवान अर्जुन को तो मरने नहीं देंगे। कृष्ण की यह प्रतिज्ञा थी कि अशस्त्रम सहाय मात्रम करिष्यामि, मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, बिना शस्त्र ग्रहण किए केवल वाणी से सहायता करूंगा, परामर्श दूंगा, राय दूंगा या रथ हाकूंगा, जो कुछ भी हो। और भीष्म ने प्रतिज्ञा की कृष्ण को शस्त्र ग्रहण करा करके छोड़ूंगा। ये और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा सारे विश्व में प्रसिद्ध हो चुकी थी। और भीष्म ने दुर्योधन को खुश करने के लिए कहा कि कृष्ण से मैं शस्त्र ग्रहण करा करके रहूंगा, यदि मैं वास्तव में गंगा जी का पुत्र हूँ, शांतनु का पुत्र हूँ, ऐसा युद्ध करूंगा कल कि मैं रथ तोड़ दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और नहीं तो कृष्ण को शस्त्र ग्रहण करना पड़ेगा। तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की भक्तवत्सलता को जगत में जाहिर करना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने प्रतिज्ञा किया। तो इस प्रकार का उनका व्यवहार था। पांडवों से हमेशा स्नेह था, लोग करें क्या। युधिष्ठिर महाराज ने युद्ध के शुरू में कहा कि पिताजी, पितामह जी, आपने आशीर्वाद दिया कि हमारी विजय हो, लेकिन आप दुर्योधन की तरफ से लड़ रहे हैं। तो भीष्म पितामह ने कहा कि बेटा, अर्थ किसी का दास नहीं है, पुरुष अर्थ का दास होता है। ये रुपया पैसा किसी का दास नहीं होता है, मनुष्य रुपया पैसा का दास होता है। तो क्या करें, हम इनके आश्रय में रहे, खाए पिए रह रहे हैं, इसलिए देह पर इनका अधिकार है, मन तुम्हारे साथ रहेगा, मैं तुम कामना करता हूँ हृदय से तुम्हारी विजय। यह वाक्य भीष्म पितामह का बहुत प्रसिद्ध है कि अर्थ पुरुष का दास नहीं है, पुरुष अर्थ का दास है ना। आप देखते हैं, आप बैठे हैं, रुपया पैसा आपके पास उड़ करके नहीं आएगा, वो नहीं कहेगा कि हमको स्वीकार कर लो, मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, बल्कि पैसा कमाने के लिए आपको जाना पड़ता है। चाहे फैक्ट्री खोलकर कमाइए, चाहे सर्विस करके कमाइए, चाहे खेती से कमाइए, अर्थ आपका दास नहीं है, आप अर्थ के दास। और अर्थ की आवश्यकता पड़ती है जीने के लिए, कपड़ा के लिए, भोजन के लिए, घर के लिए जरूरत पड़ती है। तो अन्न दे करके, वस्त्र दे करके, घर दे करके दुर्योधन ने इस शरीर को पाला है, धृतराष्ट्र ने पाला, इसलिए शरीर तो उसके काम में आएगा, लेकिन मन से मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो यह भीष्म पितामह का अनुराग था पांडवों के प्रति। तो अंत में उन्होंने देखा पांचों भाइयों को सिर नीचा किए हुए, संकोच बस अपने पितामह पर देख नहीं रहे थे, लज्जा आ रही थी, कौन मुंह लेकर के हम इनसे पूछें क्या करें, और देखो आज, और ये शोक भी हो रहा था, हाय हाय हमारे पितामह अब इस संसार से चले जाएंगे, जिनका दर्शन करने के लिए संपूर्ण विश्व के महात्मा आए हैं, राजर्षि आए हैं, हमने धराशाही किया। शोक हो रहा था, कोई सुनेगा भी तो क्या कहेगा, किसने इनको गिराया, किसने इनको बाण मारा, तो अर्जुन ने मारा। ये सुनने में कितनी दुखद बात थी, इसलिए वे सिर नीचा किए, विनय और प्रेम से युक्त थे। तो उनको देख करके भीष्म पितामह की आंखों में आंसू बहने लगे और आंसुओं से दृष्टि शक्ति कुछ दबी और इस तरह बोलने लगे, अहो कष्टम, अहो न्यायम, बहुत कष्ट की बात है, अपने जीवन के अंत में भीष्म पितामह युधिष्ठिर आदि की दशा को देख करके रो रहे हैं। अहो कष्टम का अर्थ है कि यह निंदनीय बात है, यह निंदनीय है, वास्तव यह अन्याय है। यद जुयम धर्म नंदना, धर्म पुत्र तुम लोग जो कष्ट से जी रहे हो, यह वास्तव में निंदनीय बात है। जो तुमको कष्ट में डाला है वह निंदा का पात्र है। कष्ट में डाला कौन है, तो भगवान डाले हैं। तो फिर भीष्म पितामह कह रहे हैं यह निंदनीय बात है, यह अनुचित है, अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्मनंदन तो युधिष्ठिर महाराज हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज का अनुगामी होने से सभी भाइयों के लिए धर्मनंदन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हे धर्मनंदनो जीवितुम नार्हथ क्लिष्टम, क्लिष्टम जीवितुम न अर्हथ, तुम लोग क्लेश पूर्वक जीने के योग्य नहीं, तुम लोगों को ऐसा कष्ट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि विप्र धर्माच्युताश्रय तुम लोग ब्राह्मणों के आश्रय में हो, धर्म के आश्रय में हो, और सबके बाद अच्युत के आश्रय में हो, कृष्ण के आश्रय में हो, जो ब्राह्मणों के अनुसार चले उनके आश्रय में हो, धर्म के आश्रय में हो और कृष्ण के आश्रय में हो, उसको इस तरह से कष्ट नहीं होना चाहिए। यद्यपि भीष्म पितामह जीवन भर ये मनोरथ किए थे कि युधिष्ठिर को राजा होना चाहिए, युधिष्ठिर को राजा होना चाहिए, उनके मन में यह मनोरथ रहता था और इस युद्ध में उनकी कामना थी, तो यह देख करके वे भीतर से बहुत प्रसन्न भी हुए थे कि अंत में युधिष्ठिर राजा हुआ, ठीक जो चाहते थे हो गया। और युधिष्ठिर को राजा के रूप में देख करके वे देह त्याग करने जा रहे थे, उनको प्रसन्नता थी कि जो मैं चाहा था हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके, उनके स्तुति करके और युधिष्ठिर को सम्राट के रूप में देख करके भीष्म पितामह बड़े संतोष से शरीर त्याग करना चाहते थे, लेकिन फिर भी पूर्व के कष्टों की याद आ गई और वर्तमान में भी वे रो रहे थे भीष्म पितामह के लिए, इसलिए भीष्म पितामह उनको देख करके रोने लगे और कहने लगे ये कष्ट है, ये निंदा की बात है, जुगुप्सित है तुम लोगों का दुखी होना, इस तरह से तुम लोग दुखी रहे तो कौन व्यक्ति फिर कृष्ण का आश्रय लेगा, कौन धर्म का आश्रय लेगा, कौन ब्राह्मणों का आश्रय लेगा, जो विप्र धर्माच्युताश्रय है, विप्र धर्म और अच्युत का आश्रय लेने वाले लोग जब इस तरह से दुख भोगेंगे तो फिर कौन आश्रय लेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कष्टम, ये निंदनीय बात, और अन्यायम, यह अन्याय, यहां दुख पापी को होना चाहिए, अधार्मिक जो है उसको दुख होना चाहिए, लेकिन तुम लोग सदा धर्म पर चले, धर्मनंदना मूर्तिमान धर्म हो, तुम लोगों ने सपने में कोई पाप नहीं किया है बेटा, फिर भी तुम लोगों को इतना कष्ट हुआ, यह दुख की बात है, यह अन्याय। समस्त ऋषि मुनि इस बात को सुन रहे हैं, पांचों भाइयों को जो अब तक कष्ट हुआ वह बिल्कुल गलत हुआ है, कर्म फल देने वाले पर लांछन है, थू थू है, ऐसा भी बोल रहे हैं। और इसके बाद कहते हैं अब उन्हें अपने पुत्र वधु, मतलब महाराज पांडु की पत्नी कुंती की याद आ रही है, और कहते हैं संस्थिते रथे पांडव प्रथा बाल प्रजा वधु, जब अति रथी महारथी पांडु का देहावसान हो गया उस समय बेचारी प्रथा बहुत कष्ट पाई, उस समय उसके बच्चे मतलब तुम लोग बहुत कम उम्र के थे, बालक प्रजा, जिसकी प्रजा जिसके पुत्र बालक थे, वह मेरी पुत्र वधु बहुत दुख पाई तुम लोगों के कारण, तुम लोगों के पालन पोषण में बहुत कष्ट पाई, जुष्मत कृते बहुन क्लेशान प्राप्ता, भीष्म पितामह सब देखे थे, वह बेचारी विधवा राजर्षि की पत्नी होकर के भी अपने पुत्रों के पालन में कितना कष्ट पाई थी, कि पांच पांच बेटा ब्राह्मण के रूप में रहते थे लक्ष्य भवन से निकलने के बाद, और वह उनके लिए भोजन भी नहीं जुटा पाती थी। ऐसे किसी किसी दिन बीतता था कि पांचों भाई भूखे सोते थे और बहुत कष्ट हुआ। वह पत्नी, वह स्त्री जो सम्राट की पत्नी थी महाराज पांडु की, और उसे इस तरह का कष्ट देखना पड़ा। अपने आंखों के सामने और बच्चों को वन में जाते हुए देखी, युधिष्ठिर अपना राज मुकुट उतार करके और वनवासी वेश बनाकर जा रहे थे वन में, इसको भी माता कुंती ने देखा था, और भी एक दिन के लिए नहीं, 13 वर्ष के लिए राज छोड़ करके वन में गए थे। और सर्वदा क्लेश, सर्वदा क्लेश। और इसी संदर्भ में द्रौपदी की भी याद कर रहे थे। द्रौपदी सामने बैठी थी भीष्म पितामह, इनको बहुत कष्ट हुआ, तो वधु कह रहे हैं। वधु का अर्थ होता है पुत्र की पत्नी। यह दैहिक संबंध जोड़ करके बोल रहे हैं कि हमारी वधु, हमारे पुत्र पांडु की वधु तुम लोगों के लिए बहुत कष्ट से, जब तक पांडु रहा तब तक तो ये सुख से रहे, लेकिन पांडु के बाद यह बहुत दुख में रहे। जुष्मत कृते बहुन क्लेश प्राप्त तुकवती, बच्चे वाली मां थी और बच्चों के लिए जीवित रहे। एक तो अपने पति का विरह सही, बच्चों के लिए तो बच्चों के पालन पोषण में उसको बहुत सताया गया। कुंती को भी जान से मारने की लोग सोचते थे, लक्ष्य भवन में कुंती के साथ ही वे जलाना चाहते थे पांचों भाइयों, लेकिन ये तो भगवान कृष्ण की कृपा थी कि वो कुछ भी नहीं हुआ। कुंती भी इस बात को जानती है कि बहुत क्लेश आया, लेकिन वह क्लेशों को सहने में प्रवीण थी। भीष्म पितामह उसके क्लेशों की याद करके रो रहे हैं, लेकिन कुंती कभी भी क्लेश से घबराई नहीं, बल्कि वो विपत्ति का वर मांगी भगवान से, हमें विपत्ति दीजिए। पर भीष्म पितामह आज अपने जीवन के अंत में अपनी पुत्र वधु की याद करके रो रहे और मुह बारंबार दुख भोगी, बारंबार दुख भोगी। यह है एक महान पुरुष का कुंती की याद करना। जैसे भगवान बड़े स्नेह से कुंती की याद करते थे, तो भीष्म पितामह भी बहुत अनुकूल भाव से कुंती की याद कर रहे हैं। इसके बाद सांत्वना देते हैं, इस तरह रो करके कुछ विलाप जैसे करके, और कहते हैं सर्वम काल कृतम मन्ने भवतां च जगत प्रियम। कहते हैं बेटा, जो कुछ भी हुआ है तुम लोगों के जीवन में तुम्हारे साथ, सर्वम काल कृतम मन्ने, सब कुछ काल के द्वारा हुआ है। विशेष करके यह महाभारत का युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध, यह काल के द्वारा उपस्थित किया गया। तुम्हारा जो अप्रिय हुआ, मैं धराशायी हुआ, द्रोणाचार्य मारे गए या शल्य मारे गए, तुम्हारे अन्य भी बहुत से स्वजन मारे गए, या प्रथा को जो कष्ट हुआ, तुमको जो कष्ट हुआ, सर्वम काल कृतम मन्ने, ये मैं निश्चित मानता हूं कि यह तुम्हारे पाप का फल नहीं है पुत्र। तुम लोगों ने कोई पाप नहीं किया है, तुम्हारा जो अप्रिय हुआ है, तुम्हें जो दुख हुआ है, यह काल ने किया है, तुमने नहीं किया। भीष्म पितामह के इस प्रवचन में बहुत गंभीर आशय छिपा हुआ है। कोई व्यक्ति दुख भोगे संसार में, तो उसको कहा जाता है अरे इसने ऐसा किया होगा, दूसरे को सताया होगा, या पाप किया होगा, इसलिए यह कष्ट भोग रहा है। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं अपने जीवन का अनुभव देख करके, नहीं, तुमने कोई पाप नहीं किया है युधिष्ठिर, यह सब काल करा रहा है, काल के द्वारा हुआ है। सर्वम काल कृतम मन में भवतां च जगत प्रियम, च शब्द से यह सिद्ध कर रहे हैं जो कुछ हुआ है तुम लोगों के साथ, और इसके साथ ही साथ तुम लोगों का जो अप्रिय हुआ है, मेरा धराशायी होना, वीरों का मरना, यह सब कालकृत हुआ है। वीरों का मरना, यह सब कालकृत हुआ है।
काल करा दिया, समय आ पहुंचा। नहीं तो इनके कहने का आशय यह है कि इस कुरुक्षेत्र के युद्ध को रोकने का बहुत प्रयास किया गया। भीष्म पितामह भी धृतराष्ट्र को कभी कभी शिक्षा दिए और यही कहे हैं कि पांडु पुत्रों के साथ मेल करके रहना चाहिए, पारिवारिक कलह ठीक नहीं है। और उन्होंने भी दुर्योधन को कभी कभी डांटा था, विदुर जी ने समझाया बारंबार, मैत्रेय जी ने समझाया, भगवान वेदव्यास देव ने समझाया, नारद जी ने समझाया, लेकिन काल जो चाहता था वो करा दिया। सब लोग महाभारत का युद्ध रोकने पर पड़े हुए थे और स्वयं भगवान भी गए रोकने के लिए। पांच गांव पर संतोष करने की बात करें, पांचों पांडव पांच गांव लेंगे, संतोष कर लेंगे, ठीक है तुम अपनी सारी भूमि रख। लेकिन जवाब मिलता है कि सुई के नोक से जितनी जमीन छेदी जाती है उतनी जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दे सकते, और 18 दिन में पूरी जमीन छोड़ करके चला गया दुर्योधन। जब युद्ध हुआ पूरे राज्य में कितनी सुई पड़ी रह गई हो, चलेगा देह छोड़ करके भी चलेगा। ये सब होने वाला था, काल ने कर दिया, तुम्हारा दोष नहीं। महाराज युधिष्ठिर रो रहे थे कि मैं राज्य ललूप हूं, मैंने राज भोगने के लिए सब किया, युद्ध किया, ये किया वो किया। तो शुरू में ही महाराज युधिष्ठिर के इस मनस्ताप का विनाश करने के लिए भीष्म पितामह ने कहा नहीं बेटा तुम्हारा कोई दोष नहीं, समस्त मुनियों के सामने कह रहा है, सब काल किया। सपालो जब बसे लोगों बाय और घनावली दृष्टांत द्वारा समझा रहे हैं, जैसे घनावली है, घन अवली, घन का समूह आकाश में छाता है, कौन लाता है घन को, बादल को कौन लाता है, या हम लोग बादल उत्पन्न करते हैं, कोई सरकार नियम पास करती है कि अब बादल छाना चाहिए, हम लोग करते हैं नहीं करते हैं। बादल वर्षा करते हैं, मेघ वर्षा करता है तो वर्षा से लाभ लेते हैं, लेकिन बादल बना नहीं सकते, कहीं कहीं थोड़ा कृत्रिम बादल बना करके और केवल धूल भर मार सकते कहीं कहीं लोग किए हैं। तो ऐसे वैज्ञानिकों की लोग प्रशंसा करते हो, बादल बना करके वर्षा दी। वैज्ञानिक अगर पूरा सफल हो कर रहे हैं तो फिर वर्षा काल की कोई जरूरत नहीं है, तुम करो सारा फसल पैदा करो, कर सकते नहीं। इन वायु घन को उत्पन्न करता, घनावली घन श्रेणियां, पूरा आकाश भर जाता है घनों से, और घन चमकते हैं, बिजली चमकती है, वर्षा होती है, बादल गरजते हैं। जो व्यक्ति देख रहा है वर्षा हो रही है, झमाझम ये हो रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है कि वायु आकाश से बादलों को पूरा पूरा साफ कर, कोई एक कोने में भी बादल नहीं दिखाई पड़ता, वर्षा और चमक आदि की बात तो दूर है। तो जो वायु आकाश में बादल को उपस्थित करता है वही वायु एक दिन बादल समाप्त कर देता है। इसी तरह काल इतने लोगों को जन्म दिया है, जन्म दिया था, किसी को राजा बनाया था, किसी को कुछ किया था, घर बना था, समाज बना था, सबको काल एक दिन कुरुक्षेत्र में इकट्ठा किया और मार करके कुरुक्षेत्र गगन से सबको साफ कर, इस तरह से खत्म किया। जन्म दिया किसी माँ ने, पालन पोषण हुआ, योद्धा बने, लड़ते हुए आए कुरुक्षेत्र में जुटे, यहाँ आकर के दिवंगत हो चले गए। क्या करोगे तुम, तुम्हारा कोई दोष नहीं। युधिष्ठिर महाराज बिल्कुल युद्ध नहीं करना चाहते थे। भगवान जब संधि दूत बनकर जा रहे थे तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि जैसे भी मेल हो जाए वही बात कहिएगा, जैसे भी मेल हो जाए। यहाँ तक कि अर्जुन भी कह दिया कि हाँ हम लोग नहीं चाहते हैं कि खून खराबी हो, युद्ध हो, आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, बहुत नीचे गिर करके भी जैसे वो लोग माने वैसे ठीक। यहाँ तक और तो और भीमसेन भी कह दिए, भीमसेन ने कहा कि कृष्ण मैं नहीं चाहता हूँ कि अपने बंधुओं की हत्या हो, अपने वंश का विनाश हो, क्या है इस जीवन में? हम लोग दुख भोग ही रहे हैं, पर और भोग लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन हम राज सुख के लिए अपने बंधुओं का विनाश नहीं करना चाहते। तो महाभारत में लिखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे, ये कहे कि भैया युधिष्ठिर महाराज जो कुछ भी कहे तो वो तो शुरू से ही ऐसे नरम है, लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप अपनी प्रतिज्ञा कैसे भूल गए। कहीं कौरवों की शक्ति को सुन करके भय तो नहीं हो गया आपको? भीमसेन से भगवान कहते हैं, मुझे आश्चर्य हो गया, आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सूरज शीतल हो गया, ऐसा लग रहा है। मुझे जो कुछ बात करनी होगी होगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि संधि ही होनी चाहिए, तो द्रौपदी के केशों का आकर्षण आप भूल गए क्या? दुशासन की छाती फाड़ करके खून पीने की प्रतिज्ञा की है, सब भूल गए? इतने पर भीम बिल्कुल गर्म हो गए, कहे नहीं नहीं कृष्ण, मैं भूला नहीं हूं, लेकिन सबके बाद भी मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार सुख से रहे, पारिवारिक सुख सुविधा के लिए मैं अपने प्रतिज्ञा को छोड़ सकता हूं, लेकिन आप यह कह रहे हैं कि कौरवों की शक्ति सुन करके मैं भयभीत हो गया हूं, यह बात नहीं। यदि मैं चाहूं तो सुमेरु पर्वत को पीस सकता हूं, इतना खड़े होकर के हाथ मलने लगे, कायरता की बात मत कीजिए, मैं तो स्नेह से बोल रहा हूं, सभी अपने हैं, बंधु हैं, क्यों मारूं? लेकिन जहां लड़ने की बात है, उत्साह की बात है, तो मैं तैयार, ठीक है, संधि की बात मत कीजिए, होने दीजिए, होने दीजिए युद्ध। भगवान ने कहा हाँ अब ठीक पोजीशन में हो गए, अब ठीक हो गए। तो उनको तो इस तरह के वास्तव में ये पांडु पुत्र थे, कितना सुशील थे, कितना प्रेमी थे वास्तव में सबके, लेकिन जो होने वाला था, काल का भी बाप कृष्ण जो कराना चाहता था हो गया, जो कराना चाहते थे हुआ। भगवान ने अपनी बुआ से कहा था कि बुआ जी युद्ध होगा और कौन कौन बचेंगे मैं आपको अभी बता रहा। कुंती को उन्होंने खुशी का खबर सुनाया था कि आपके पांचों पुत्र जैसे युद्ध में जा रहे हैं वैसे ही लौट करके आएंगे और बाकी आप पौत्रों से हाथ धो देंगे। उन्होंने भगवान ने कहा था कि द्रौपदी के पांचों पुत्र मारे जाएंगे, अभिमन्यु मारे जाएंगे, लेकिन मेरे भक्त पांच पांडवों का बाल बांका नहीं होगा, जैसे जा रहे वैसे आएंगे, इस तरह से उन्होंने कहा था। तो मैं यह कह रहा हूं कि ये युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल सहदेव कभी युद्ध के प्रेमी नहीं थे, थे क्षत्रिय कुल में उत्पन्न, युद्ध में देवताओं को भी जीतने वाले थे, एक बार की बात है भगवान शिव किरात वेश में, व्याध के रूप में, जो भील कहते हैं, भील के रूप में आए अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए, तो एक ही समय में एक बाराह का निशाना लिया दोनों ने, एक बाराह था उस पर निशाना लिया और दोनों ने बाण छोड़ दिया, अर्जुन छोड़े और भगवान शिव छोड़े, एक साथ लग गए, तो उस बाराह के लिए झगड़ा होने लगा, मैंने मारा है तो मैंने मारा है, मैंने मारा है, मैंने मारा है, तो आ जाओ तो आ जाओ, तो बाण चलने लगे भगवान शिव में और अर्जुन में, तो अर्जुन के खास करके बाण चलाने की स्फूर्ति को, तीव्रता को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो, उन्होंने कहा आज तक ऐसा धनुर्धर मैं कोई सुना भी नहीं था, देखने की बात तो दूर रही, धन्य हो वीर। तो उन्होंने अपना पाशुपतास्त्र दिया, प्रलय करने वाला अस्त्र, अपना अस्त्र दिया प्रसन्न होकर के, जिसका प्रयोग अर्जुन ने कभी नहीं किया। अर्जुन का अर्थ ही होता है रिजु, सीधा साधा व्यक्ति, संस्कृत के रिजु शब्द से अर्जुन शब्द बनता है, अर्जुन का अर्थ होता है बिल्कुल सिंपल साधारण व्यक्ति, अर्जुन के पास ऐसे ऐसे अस्त्र थे कि एक अस्त्र विश्व का प्रलय कर सकता था, लेकिन युद्ध में कभी वो उसका प्रयोग नहीं किया। वो सीधे साधे व्यक्ति थे, आराम से लड़ते थे। भगवान कृष्ण कभी कभी इनसे उद्विग्न हो जाते थे, ये वीर कितने तीखे तीखे बाण मार रहे हैं और अभी तुम दादा देख रहे हो, गुरु देख रहे हो, इतने ढीले हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा। तो अर्जुन के लिए वो चक्र उठा लिए, भाई अब तुमसे काम नहीं होगा, ऐसे लड़ोगे तो भीष्म तो तुमको मार ही डालेंगे। तो अर्जुन को उकसाते थे कई ऐसे वीर थे जैसे कर्ण, और कर्ण का चक्कर जब धरती में धसा तो अर्जुन बिल्कुल चुप हो गए, नहीं इस अवस्था में नहीं मारेंगे, धर्म का त्याग नहीं करेंगे। भगवान उनको उकसाए, फिर गीता सुनानी पड़ेगी, चलो उठाओ उठाओ उठाओ, बाण चलाओ चलाओ, यही अवसर है इसको मारने का। अर्जुन वास्तव में बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे, कभी उनमें आडंबर नहीं थे, कभी उन्होंने नहीं दिखाया कि मैं इतना बड़ा विजेता हूं, इतना बड़ा धनुर्धर, कभी अहंकार नहीं आया कि कृष्ण मेरे सारथी हैं, ये है। सबसे बड़ा सौभाग्य अर्जुन का था कि कृष्ण उनके साथ, लेकिन इसका कभी गर्व नहीं होता था अर्जुन को, गर्वहीन सिंपल जीवन था अर्जुन, इसलिए उनका नाम है अर्जुन। ये पांचों भाई ऐसे थे जो कभी युद्ध में उत्साह नहीं रखते थे, क्योंकि युद्ध कोई मिठाई थोड़े है, युद्ध का मतलब है शरीर का विनाश, इसमें कभी रुचि नहीं रही। इसलिए अर्जुन तो शुरू में ही जैन ही देखे दोनों पक्ष में अपने स्वजनों को, उन्होंने साफ कह दिया कृष्ण से न युद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और सेना को देखने के लिए अर्जुन पहले तो जोश में बोले, भगवान कृष्ण से कहे कि बिगुल बजने के बाद कहे, दोनों ओर से जब चैलेंज हो गया, शंख वादन और जुझाऊ बाजे बज गए, तब तो अर्जुन के मन में इच्छा हुई कौरव पक्ष के बल को इस्टिमेट करने की। उन्होंने कृष्ण से कहा कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में चित, हे अच्युत दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कीजिए। तो भगवान ने पूछा क्यों, क्या आवश्यकता है? तो कहते हैं जाओ देता निरीक्षे हम युद्ध कामान अवस्थिता, मैं यह देखना चाहता हूं कि युद्ध की कामना से जो लोग आए हैं कौन कौन लोग हैं, उनका क्या बल है, किसके साथ मुझे भिड़ना होगा, चलो मैं एस्टिमेट करना चाहता हूं। और खास करके भारत राष्ट्र से दुर्बुद्धे युद्ध प्रिय चिकित्सक, अपने पक्ष के वीरों को तो मैं देख ही लिया हूं, लेकिन दुर्बुद्धि भारत राष्ट्र दुर्योधन का हित करने वाले कौन कौन लोग आए हैं, जरा मैं उनका चेहरा देख लूं, एक बार देख लूं कि ये भलमानुष लोग आए हुए, जरा मैं उनको देखना चाहता, क्योंकि अर्जुन बहुत बड़े विजेता थे, पूरे विश्व में और देवताओं को भी जीते थे, तो युद्ध में उत्साह था ही, स्वाभाविक है। लेकिन जब स्वजनों को उन्होंने देखा और भगवान बीच में ले जाकर रथ को दिखा रहे थे अंगुली से, देखो ये तुम्हारे पितामह भीष्म हैं, जानबूझ करके मोह पैदा करने के लिए नाम रख रहे थे और संबंध बता रहे, वो तुम्हारे मामा शल्य खड़े हैं, तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य जी, ये वो हैं, वो हैं, इस तरह से वो तुम्हारे साले हैं, तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारा भाई दुर्योधन वो खड़ा है, वो है, वो है, ये है वो। और फिर इधर देखते हैं तो इधर सब अपने स्वजन, उधर भी अपने स्वजन। अर्जुन तो अब जो उत्साह से कहे थे कि जरा मैं चेहरा देखना चाहता हूं, अब इनका ही चेहरा देखने लायक हो गया। फिर जब इनका शरीर कांपने लगा, पसीना छूटने लगा, गांडीव धनुष हाथ से गिरने लगा, धनुष तक संभालने की शक्ति नहीं रही, तो भगवान ने कहा क्या हो गया अर्जुन? तो कहते हैं कृष्ण मैं युद्ध नहीं कर सकता, युद्ध करना दूर की बात है, नच सखनोमी अवस्था को, मैं इस पर खड़ा नहीं रह सकता हूं रथ पर, अब मुझे खड़ा रहने की शक्ति नहीं, मैं देख रहा हूं हमारे मामा आए हैं, हमारे साले आए हैं, हमारे बहनोई आए हैं, हमारे पितर यहाँ पर है, हमारे दादा युद्ध में है, हमारे गुरु हैं, मामा है, सब संबंधी हैं, मैं इनको नहीं मारना चाहता, छोटे से राज्य के लिए क्या, तीनों लोगों का राज यदि इनको मारने से मिलेगा तब भी मैं इनको नहीं मार सकता। जैसा मर्थे कांचितन्नो राज्यम भोग सुखानी च तयमे वस्तिता युद्ध प्राणांश त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए मनुष्य धन कमाता है, राज्य कमाता है, वही अपने स्वजन ही मर जाएंगे तो हम राज्य लेकर क्या करेंगे। ये कितना बड़ा ऊंचा विचार है। हम लोग मुगलों का इतिहास पढ़े हैं, प्राय पढ़े हैं कि पुत्र ने बाप को काटकर गद्दी हासिल कर लिया, औरंगजेब ने अपने भाइयों को मार करके बादशाहियत ले लिया, प्राय अपने पूर्वज को मार करके, भाई को मार करके बस गद्दी ले। बहुत छोटा विचार, अर्जुन का कितना महान विचार है। कहते हैं नहीं, मुझे राज्य नहीं चाहिए, सुख भोग नहीं चाहिए। भगवान से उन्होंने कहा कि भैक्षम अति है लोके, मैं भीख मांग करके जी लूंगा लेकिन मैं हत्या नहीं करूंगा, हमें नहीं चाहिए राज्य। कौन व्यक्ति बोल रहा है? जो एक सम्राट का पुत्र है, राजकुमार है। राजकुमार के मन में राज्य की कितनी लालसा होगी आप समझ सकते हैं। जिसके बाप की वो कमाई है, उत्तराधिकारी है और युद्ध होने जा रहा है, जायज, कितना वो चाहेगा राज्य। लेकिन अर्जुन के मन में राज्य की कोई लिप्सा नहीं। पहले तो वो सब कह ही रहे थे कि युद्ध नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। युद्ध का दिन तय हो गया, कुरुक्षेत्र में सेना जुट गई, बिगुल बज गया, उसके बाद भी वो वीर कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं अहो वत महत पापम कर्तुम व्यवस्था। हम लोग महापाप करने के लिए जुटे हुए हैं, युद्ध नहीं है, धर्म युद्ध नहीं है, महापाप। कोई युद्ध में अपने स्वजनों को मारता है कि अपने शत्रुओं को मारता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा विचार तुम्हारे मन में कैसे आ गया? तो वे कहते हैं आप अपने गुरु को मारेंगे, आप गर्गाचार्य जी की हत्या करेंगे, संदीपनी को मारेंगे, आपको कहा जाए अपने पिता वसुदेव जी की हत्या कीजिए, करेंगे? तो आप अपने से समझिए, मैं भी कभी नहीं युद्ध कर सकता। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तब अनाउंस कर दिया जाए, तब दोनों सेना लौटे। लेकिन अर्जुन के लिए इस तरह से चल देना भी संभव नहीं था। तो अर्जुन ने सब मिलाकर के भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण। अर्जुन कहते हैं मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, आप बताइए ठीक से कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं सब तरह से आपकी शरण में, आप ईश्वर हैं, आप भगवान हैं, केवल मेरे मित्र ही नहीं है, मैं आपका शिष्य हूं, शिष्यस्ते हम साधिमान त्वं प्रपन्नम। अर्जुन जानते हैं कि ये मेरे मित्र हैं, लेकिन अर्जुन का कहना है कि अब मित्र रहने से काम नहीं चलेगा, हे मित्र मैं आपका शिष्य हूं। तो शिष्य हूं आपका, मुझे सिखाइए समझाइए। तो भगवान हंस रहे थे, हंसते हुए गीता का उपदेश चालू किए। भगवान इसलिए हंस रहे कि देखो आज मित्र शिष्य हो गया, जितनी फिलॉसफी बोल करके अब समर्पण कर रहा। तो भगवान समझाने लगे, जानते हो कौन मरेगा? शरीर मरेगा और शरीर ऑलरेडी मरा हुआ है, ये सभी वीर स्वर्ग में जाएंगे, हमारे धाम में जाएंगे, यह आवश्यक है युद्ध करना। भगवान ने समझाया और युद्ध की आवश्यकता के बहाने उन्होंने जीवन की फिलॉसफी समझाया, भगवद गीता दिया, जो विश्व का सबसे महान दार्शनिक ग्रंथ है। गीता पर टीका लिख करके आचार्य शंकर अपने को धन्य मानते, टीका लिख लिख करके लोग समझते हैं मैं बहुत अच्छा हूं। आज तक गीता का विरोध करने वाला कोई नहीं हुआ, सब लोग चाहते हैं कि हम ऐसा सिद्ध कर दें कि हमारा विचार गीता के अनुकूल है, भले वो अपना विचार दे रहे हो, लेकिन कोशिश करते हैं कि सिद्ध हो जाए कि गीता से बोल रहा है। वो बोल रहे हैं अपने मन से लेकिन गीता का श्लोक दे। जब गीता की गलत व्याख्या संसार में छा गई, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी को देना पड़ा थी भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता एज इट इज प्रभुपाद जी को लिखना पड़ा, और इसको पढ़ करके तब सारे विश्व में लोग अर्जुन जैसा कृष्ण को समर्पण कर रहे हैं। तो मैं यह कह रहा हूं कि पांडु पुत्र जो युधिष्ठिर आदि सदा से ही बिल्कुल सीधे साधे थे, कभी युद्ध नहीं करना चाहते थे। नहीं चाहने पर, रोकने पर भी युद्ध हो गया। तो कौन कराया? काल कराया। इसलिए तुम चिंता मत करो, अन्यथा जत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिर ब्रिकोदर और कृष्णोस्त्री गांडिवम चापम सुहित कृष्णस्ततो विपत्। जहां पर पुण्य का बल है, युधिष्ठिर जहां राजा हो और हाथ में गदा लिए हुए जहां भीमसेन हो, जहां इतना बड़ा शरीर बल हो और जहां अस्त्र संपत्ति हो, गांडिव जैसा धनुष हो और उस गांडिव को धारण करने वाला अर्जुन जैसा विजेता हो और सबके बाद सुहृद कृष्ण साक्षात परब्रह्म भगवान जहां सुहृद है, हित करने पर पड़े हुए हैं, क्या वहां विपद पड़ सकती है? क्या कभी संभव है? विपद या संपद देने वाले कृष्ण हैं और वे सुहृद बने हुए सब तरह से हित करना चाहते हैं और राजा धर्म सुतर। ऐसा लिखा गया है कि यदि राजा धार्मिक हो तो पूर्व जन्म में किए हुए पाप का फल भी जनता नहीं भोग पाती है राजा के पुण्य से। वह ऐसी व्यवस्था करता है, धर्म कर्म में जनता को लगा देता है कि पिछला पाप अपना प्रभाव नहीं दे पाता है। युधिष्ठिर जैसा राजा जहां हो, जत्र धर्म सुतो राजा, तो वहां विपत हो नहीं सकती है। केवल युधिष्ठिर जैसा राजा हो तब भी, जत्र धर्म सुतो राजा, वहां विपत नहीं हो सकती है। लेकिन इस धर्म सूत को निरंतर विपत में रहना पड़े, स्वयं ही, दूसरे लोग कहां से विपत्ति से पार होंगे, ये स्वयं विपत्ति में रहे, हमेशा क्लेश भोगते रहे। तो जत्र धर्म सुतो राजा, ये भीष्म पितामह का उद्गार है। और गदा पाणि बृकोदर, हाथ में गदा लिए हुए जहां भीम, क्या वहां विपत्ति संभव है? कृष्णो अस्त्री, कृष्ण माने अर्जुन, जहां अर्जुन धनुर्धर है वहां क्या विपत्ति हो सकती है? कभी नहीं। और जहां गांडीव जैसा आयुध हो, वज्र जैसी शक्ति थी गांडीव धनुष में, कोई दूसरा धारण नहीं कर सकता था। लौकिक दृष्टि से एक कृष्ण को छोड़ करके बाकी कोई भी गांडीव धनुष को धारण करने में समर्थ नहीं था, वो इतना भारी था, केवल अर्जुन उसको धारण करते थे, यहां तक कि भीम भी धारण नहीं कर सकते थे। और अर्जुन ने कहा था कि कोई यह कह देगा कि गांडीव धनुष के धारण करने जो तुम नहीं हो, दूसरे को दे दो, उसका मस्तक काट देंगे मैं। और यह बात युधिष्ठिर महाराज ने एक दिन कह दिया, कर्ण पर्व महाभारत में लिखा हुआ। तो गांडीव जैसा अक्षय परम विजयी धनुष जहां है, गांडीवम चापम, और सबके बाद कृष्ण जहां सुहृत हैं, क्या वहां विपद पड़ सकती है? कभी नहीं। लेकिन फिर भी विपद पड़ी, क्यों? भीष्म पितामह अंगुली से दिखा करके कृष्ण की तरफ कह रहे हैं कि राजन, ये कब क्या करना चाहते हैं कोई नहीं जानता है। क्यों तुम जैसे भक्त को विपत्ति में रखे हुए हैं? अब इनके मनोभाव को कौन जान सकता है? विपद में डाल भी रहे हैं और तुरंत सहारा भी दे रहे हैं, इनकी लीला है। ये प्रश्न हो गया कि पितामह जी, तो क्या कृष्ण भी काल के अधीन है क्या? पहले कहे कि सर्वम काल कृतम मन्ये, काल कर रहा है, इसीलिए जहां युधिष्ठिर राजा है इसको कहते हैं पुण्य बल, पुण्य का बल है। हमारे यहां कहते हैं पुण्य से पहाड़ टलता है। तो युधिष्ठिर तो मूर्तिमान पुण्य है, पुण्य श्लोक, जिनका जस ही सारे जगत को पवित्र कर सकता है। वे राजा है जहां पुण्य बल है और शरीर बल भीम में है, अस्त्र बल अर्जुन में है और अस्त्र संपत्ति भी है, और सबके बाद ईश्वर का बल, भगवान का बल, दैव बल, सारा जगत कृष्ण के हाथ में, अधिकार में। और ये अकेले भी कहीं कहीं रहे सब लोग, अकेले तभी विपद नहीं होगी, लेकिन ये पांचों एक साथ हैं और ततो विपद, फिर भी विपद। तो इसी पर प्रश्न उठता है, तो क्या कृष्ण को भी आप काल के अधीन मानते हैं क्या? तब कहते हैं राजन शब्द कह करके, ऐसे मैं कथा में कह रहा हूं बेटा बेटा, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह कभी पुत्र या बेटा नहीं कहे, हमेशा राजा कह रहे हैं, क्योंकि उनको इतनी खुशी है युधिष्ठिर को राजा के रूप में देख करके, हमेशा संबोधन राजन करते हैं। न यस्य करहिचिद राजन कुमान वेद विभीषितम्, अस्य हे राजन, ये तुम्हारे ममेरे भाई का जो अभिनय कर रहे हैं, इनके विभीषितम, इनकी इच्छा को ये कब कौन काम किस लिए करना चाहते हैं कोई भी नहीं जान पाता। यदि जानने की चेष्टा करता है, जिज्ञासा करता है, तो बड़े बड़े विद्वान भी भ्रम में पड़ जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं क्या बात, क्यों ऐसा कर रहे हैं। जैसे अश्वत्थामा के हृदय में बैठ करके ब्रह्मास्त्र चलवा रहे हैं यही, और उधर से तुम लोगों की रक्षा भी कर रहे हैं। सबके हृदय में कृष्ण है, ब्रह्मास्त्र वही चलवा रहे हैं और उधर रक्षा भी करते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। बड़े बड़े कवि भी, विद्वान भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं पाते। द्रौपदी से इतना प्रेम करते हैं, उसका भरी सभा में अपमान करवा रहे हैं, लेकिन फिर अपमान होने नहीं दे रहे। दुर्योधन के हृदय में भी भगवान है, दुशासन के भी हृदय में भगवान है, यदि भगवान सैंक्शन न करें तो वे कुछ बोल नहीं सकते। मत स्मृति ज्ञान में पोहनम छ, तो उधर दुशासन के हृदय में बैठ करके साड़ी खींच रहे हैं और इधर साड़ी बढ़ा रहे, ये इनका विभीषित कोई जान नहीं। अश्य कहकर अपनी अंगुली से दिखा रहे हैं कृष्ण को, देखो यही पर तुम देखो। अब यहां ये आए हैं, यही कहकर के आए होंगे ना कि भीष्म हमसे ज्यादा जानते हैं, चलो भीष्म से पूछ लो। ये अवश्य कहे होंगे, यदि तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है तो भीष्म जैसे ज्ञानी से पूछ लो, यही कहकर लाए होंगे। इनका नाटक कुछ समझ में नहीं आता, कौन काम किस लिए कब करना चाहते हैं समझ में नहीं आता। तो भीष्म पितामह के कहने का सारांश है कि तुम पर जो भी विपत्ति पड़ी है राजन, यह सब इनकी व्यवस्था है, और विपत्ति दे रहे हैं परंतु तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रहे हैं, और कृष्ण साथ नहीं छोड़ रहे हैं, इसीलिए पांडव या उनकी जननी विपत्ति को विपत्ति समझे ही नहीं, और विपत्ति है नहीं वास्तव में। अगर विपत्ति होती तो कुंती महारानी ये क्यों मानती कि विपत्ति दीजिए, उस विपत्ति में बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है, वह क्या लाभ है उसको भीष्म पितामह कहते मैं जानता हूं, समझ रहा हूं, लेकिन अन्य लोग यदि प्रयास करेंगे जानने का तो भ्रम में पड़ जाएंगे, ये कौन सा नियम है कि अपने भक्तों को इतना भगवान दुख दे रहे हैं। कभी कभी लोग कहते हैं पांडव तो इतने भगवान के भक्त थे लेकिन जिंदगी भर केवल दुख भोगे, टोटल जोड़कर क्या दुख भोगे, किसी से पूछा जाए। द्रौपदी का अपमान हो रहा था, हुआ अपमान, क्या पांडव लक्ष्य भवन में जल गए, क्या भीम मर गए, या वनवास में पांडव गए तो इनको कोई कष्ट हुआ, कष्ट आते थे चुटकी बजाते बजाते खत्म हो जाते। द्रौपदी का अपहरण हुआ था एक दिन, जरासंध नहीं जयद्रथ अपहरण किया था, लेकिन शाम होते होते अपने आश्रम में आ गए, और उस दिन महाराज युधिष्ठिर इतने व्याकुल थे, इतने व्याकुल थे, वे मार्कंडेय जी से बात करने लगे, तो कहते हैं मुनि जी यह बताइए कि हमारे जैसा अभागा सृष्टि में कोई हुआ है क्या, हमारा राज, हमारे पिताजी मर गए, हमारा राज चला गया, हमारी स्त्री का अपमान हुआ, और हम वन में पांचों भाई अपनी पत्नी के साथ दुख भोग रहे हैं, तो वन में आने के बाद भी हमारी पत्नी चोरी चली गई, हमारे जैसा दुखी कोई विश्व के इतिहास में अभी कोई हुआ है क्या, हम तो समझते हैं हमारे जैसा दुखी कोई नहीं हुआ होगा, तो मार्कंडे जी उनको सांत्वना देते हैं कि महाराज आप क्या दुखी हैं, पूर्व काल से रामायण में हम लोग पढ़ते हैं भगवान श्री राम की पत्नी चोरी चली गई, महीनों तक दूसरे के यहां रही, आपकी पत्नी तो दिन भर नहीं आ गई आपको क्या विपद है वो समझा रहे थे। और उनके पिताजी भी शरीर छोड़ दिए, दशरथ महाराज की मृत्यु हो गई थी, उनकी सौतेली माता ने उनको वन में जाने के लिए कहा था, और आपसे एक साल अधिक आपको तो 13 साल का वनवास है, उनको 14 साल का था। और सीता चोरी चली गई, कहां गई थी? समुद्र पार, समुद्र पार कई चली गई थी, और समुद्र पर उनको सेतु बनाना पड़ा, कितना परिश्रम करना पड़ा। समुद्र पार कई चली गई थी और समुद्र पर उनको सेतु बनाना पड़ा, कितना परिश्रम करना पड़ा। ये पागल की तरह खोज रहे थे सीता को, रो रहे थे, मतलब भगवान की लीला सुना रहे हैं सांत्वना देने के लिए। तो ऐसा ऐसा कष्ट उनको हुआ, आपको तो अभी कुछ नहीं हुआ। हमारा जो युधिष्ठिर कहता अच्छा भगवान श्री राम की लीला सुनाइए शुरू से अंत तक, तो महाभारत में एक सेक्शन है कई अध्यायों में जो भगवान की लीला सुनाई गई, मार्कंडे जी के मुख से भगवान श्री राम की कथा सुन रहे, अब अपनी विपद आदि सब भूल गए, बस कथा सुनाइए, अब रामायण सप्ताह चालू हो गया तो मार्कंडे जी वक्ता बने जो युधिष्ठिर महाराज सुनने लगे। लेकिन प्रश्न इस तरह से चालू हुआ था, युधिष्ठिर महाराज में और भगवान श्री राम में कुछ कुछ बात के लिए साम्य, जैसे पिताजी का मरण, वन में आना, स्त्री का अपहरण, कई कई और भी हैं। जैसे वन में भगवान राम के पास दुख हुआ, सीता को खा जाना चाहती थी सूर्पणखा, ऐसे ही पांडवों को भी खाने के लिए कई बार लोग आए, राक्षस आदि, भीम को सर्प पकड़ा था, क्या क्या किया था, बहुत विपत्ति थी। इस तरह भगवान श्री राम में और युधिष्ठिर महाराज के दुख में साम्य है, अतः उस समता के कारण कथा छिड़ गई। तो वन में भी भाई कथा सुन रहे थे आनंद के साथ, ऋषि मुनियों के साथ। तो मैं यह कह रहा था कि विपत्तियां आ रही थी, दुख आ रहे थे, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से तुरंत विदा हो जाए। ऐसा नहीं कि विदा हो गए तो अब दुख नहीं आ रहा है, वो निरंतर आते रहते थे लेकिन जाते रहते थे, और उन विपत्तियों में भगवान के स्मरण के कारण जो आनंद होता था, उस आनंद के कारण माता कुंती विपत्ति का वर मांग रहे थे। वो सोचते थे बल्कि द्रौपदी का रोज रोज चीरहरण हो, रोज जलता रहे और आप उसी तरह से वस्त्रावतार लेते रहे, तो फिर क्या दिक्कत है, फिर आनंद ही आनंद। इस तरह से रोज लक्षा भवन जला करे और हमारे पुत्र बचा करे, आग लगे लक्षा भवन में रोज। जब वनवास में भी इतना पांडवों का उत्कर्ष हुआ, बहुत तेजस्वी बन करके वे आए थे, लौटे थे, बिल्कुल उनका शरीर विषयों जैसा बिल्कुल उज्ज्वल था और बल भी बढ़ गया था, तब ये लोग एक मीटिंग किए महाराज विराट के यहां कि अब क्या करना चाहिए। सातकी जी आए थे, श्री बलराम जी आए थे, भगवान कृष्ण आए थे मिलने के लिए 13 साल बीतने पर महाराज विराट के यहां, जहां अभिमन्यु का विवाह हुआ, तो वहां मीटिंग हुई थी कि अब क्या किया जाए। तो श्री बलराम जी ने ही कहा कि कोई व्यक्ति जा करके और उन लोगों से प्रेम से मांगे। सात्यकी जी तो क्रोधित हो गए, श्री बलराम जी पर आक्षेप किए कि आप सदा उनके पक्ष की बात करते, मांगे, हम लोग क्षत्रिय है, जाकर के मांगे, यदि आपका उनसे संबंध है तो आप जाकर कह दीजिए कि दे दो, मांगने की क्या इसमें जरूरत है, आप सूचना दे दीजिए कि वो लोग आ गए हैं, वो लोग राज दे दें। तो श्री बलराम जी ने कहा ठीक है, मैं जाऊंगा, मैं समझा दूंगा, दुर्योधन इनका चेला था। सात्यकी जी व्यंग करते हैं कि श्री बलराम जी का पता नहीं लगता है क्यों इतना अनुकूल बोला करते हैं उन लोगों,
ये तो देख ही नहीं सकते हैं कि पांडव 13 साल तक वन में थे, ये तो ये देख नहीं रहे। अब ये आए हैं 13 साल के बाद और जाकर भीख मांगे तब इनको अच्छा लगेगा, भीख मांगने की जरूरत नहीं है, चलिए हस्तिनापुर में और डांट कर कहा जाए कि राज दो और नहीं दे तो युद्ध दो बस। श्री बलराम जी वास्तव में बहुत मधुर स्वभाव के थे, दोनों पक्ष में हमेशा प्रेम चाहते थे, कौरव में और जादव में। तुमने कहा नहीं नहीं लड़ाई नहीं होनी चाहिए, कोई बहुत कुशल व्यक्ति जाए उनके पास और उन्होंने ही कहा कि कृष्ण अगर जाए ये बात करे तो वो सब समझ जाएंगे, सबसे बात करने वालों में कुशल ही है। बलराम जी ने कहा कि इनको जाना चाहिए, तो भगवान कहे ठीक है मैं जाऊंगा, युधिष्ठिर का दूत बन करके वे गए हस्तिनापुर। ये भगवान की लीला। तो पांडव बहुत उत्साह में आए थे, उनको कोई शोक नहीं था, शोक सबसे ज्यादा हो गया भीष्म पितामह के गिरने से, सबसे भारी दुख इनको यही था और जो स्वजन मरे थे अपने युद्ध में। तो भीष्म पितामह कहते हैं कृष्ण क्यों ऐसा करते हैं, जब विजिज्ञासया युक्ता मुह्यंती कवयोपि, बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते वास्तव में यह इसलिए करते हैं, कृष्ण भक्तों पर विपत्ति दिए, पांडवों पर विपत्ति दिए और रक्षा किए यह दिखाने के लिए कि देखो मैं अपने भक्तों से कितना प्रेम करता हूं। विपदहारी कृष्ण विपद में साथ कभी नहीं छोड़े, सर्वदा साथ रहे। यहां तक ये लिखा गया है कि जब युद्ध होने वाला था, तय हो गया युद्ध होने का, तो द्वारका में चर्चा चलने लगी भगवान कृष्ण और बलराम जी में। भगवान कहे कि ये हमारे फुफेरे भाई दुर्योधन या युधिष्ठिर आदि, ये तो लड़ेंगे निश्चय, युद्ध तो होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो संबंधी हैं। तो श्री बलराम जी ने कृष्ण को राय दिया कि देखो अपने बंधुओं में युद्ध हो रहा है, इसलिए हम लोगों को इस युद्ध में भाग नहीं लेना चाहिए किसी भी पक्ष से, जैसे युधिष्ठिर अपने हैं वैसे दुर्योधन भी है, दोनों एक ही परिवार के संबंधी, इसलिए हम लोगों को इस युद्ध की कोई बात ही नहीं करनी चाहिए और सबसे अच्छा उपाय ये है कि युद्ध के दिन को पहले से जोह लो और 2-4 दिन पहले तीर्थ यात्रा में निकल जाए। ये तीर्थ ने देना भाई निकल गए तीर्थ यात्रा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये तो आप ठीक कहते हैं, लेकिन अर्जुन युद्ध में हो तो मैं अर्जुन से उदासीन नहीं हो सकता, मैं तीर्थ करने नहीं जाऊंगा, इतना मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं किसी पक्ष से लड़ूंगा नहीं, क्योंकि दोनों अपने हैं, दुर्योधन हमारा संधि है और युधिष्ठिर हमारे फुफेरे भाई हैं, तो मैं हथियार नहीं उठाऊंगा लेकिन रहूंगा साथ में, मैं छोड़ करके नहीं जाऊंगा, आपको तीर्थ यात्रा कंपनी चालू करनी है आप कीजिए, हम तीर्थ यात्रा में नहीं जाएंगे, हम तो अर्जुन का साथ छोड़ेंगे नहीं, युद्ध भी नहीं करेंगे लेकिन अर्जुन के साथ रहेंगे। भगवान ने स्पष्ट बात किया बलराम जी से, इसलिए बलराम जी कहे भाई मैं तो किसी तरफ नहीं रहूंगा, मैं तो जा रहा हूं। तो ये तीर्थ यात्रा में चल दिए, कहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब जा करके नैमिषारण्य में एक साधु को जान से मारती। ये भगवान की लीला है, और वो केवल प्रणाम नहीं करने के कारण, कथा कह रहे थे शुद्ध गोस्वामी उठे नहीं, प्रणाम नहीं किए, बस एक सीख उठा करके फेंक दिए, जो कि तीर्थ यात्रा में उन्होंने नियम लिया था, प्रभास से नियम लिए थे किसी प्राणी की हत्या नहीं करूंगा। भगवान ने हंस रहे थे अंत में कि आप युद्ध नहीं किए लेकिन जाकर के महात्मा का वध कर दिए। भगवान की लीला कुछ समझ में नहीं आती है, सबसे प्रिय उनके पांडव ही हैं, पांडवों के साथ ही उनके जीवन का सारा समय बीता और फिर भी पांडवों पर विपत आती रही, ये सब किसका किया हुआ, इनका किया हुआ, इसलिए युधिष्ठिर हे राजन तस्मादिदं दैवतंत्रं देवस्य भर्तृसभा तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभो। हे नाथ, युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं भीष्म पितामह, हे नाथ तो हे कुल परंपरागत स्वामी, हमारे वंश परंपरा में इस राज्य के वास्तविक अधिकारी आप, युधिष्ठिर को कह रहे नाथ शब्द कहकर। तो भीष्म पितामह दादा हैं और अपने पौत्र को नाथ कैसे कहेंगे? इसका अर्थ है हे कुल परंपरागत स्वामी और हे प्रभु, प्रभु माने हे शासन करने में समर्थ, तुम समर्थ हो प्रजा का पालन करने में, तो तस्य अनुविहित इस कृष्ण का अनुगामी रह करके, इनका अनुवर्ती रह करके, इनकी आज्ञा के अधीन रह करके, हे नाथ हे स्वामी अनाथ प्रजा का पालन करो। इसमें प्रजा अनाथ हो गई, तुम चिंता मत करो महाराज, मैं चला जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, इसकी चिंता मत करो, तुम समर्थ हो प्रजा का पालन करने में, कृष्ण के अधीन रह करके प्रजा का पालन करो, यह आशीर्वाद दे रहे, तुम समर्थ हो प्रभु कह करके, सब तरह से तुम समर्थ हो पालन करो। यह सोच करके कि यह सारा जगत दैव के अधीन है, ईश्वर के अधीन है, यह विचार करके कृष्ण के अधीन रहो सदा और अनाथ प्रजा का पालन करो। नाथ पाही प्रजा, अनाथा प्रजा पाही, इसमें प्रजा अनाथ हो गई, सब राजा तो लड़ करके मर चुके, कोई राजा ने अराजकता छाई हुई है, और इस पर भी यदि आप शोक करेंगे, आप रोएंगे, तो इस प्रजा का पालन कौन करेगा? तो आप चिंता मत कीजिए, आप वास्तविक अधिकारी हैं, आप धर्म पूर्वक शासन कीजिए, प्रजा को सुख दीजिए। फिर ये प्रश्न होता है कि इनका अनुगामी क्यों रहे हम? मान लीजिए जो युधिष्ठिर पूछे कि आप कृष्ण पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं, यह बात समस्त ऋषियों के बीच में हो रही है, सब सुन रहे हैं, तब भीष्म पितामह अपने मन के भावों को अब रोक नहीं रहे हैं। युधिष्ठिर को शिक्षा देने के बाद, उपदेश देने के बाद कहते हैं, एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण कुमान मोहयन माया लोकम गूढ़श्चरति विश्लेषो। कहते महाराज, एष वै भगवान साक्षात, ये श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, साक्षात भगवान स्वयं भगवान को कहते हैं, अन्य जो भगवत स्वरूप है भगवान के, वे सब श्री कृष्ण पर आश्रित, कृष्ण अन्य भगवत स्वरूपों के रूप में अपने को एक्सपैंड किए, तो जो स्वयं भगवान है, जिसकी भगवत्ता अन्य की कृपा पर निर्भर नहीं करती है, वो है स्वयं भगवान। तो ऐसा वही भगवान साक्षात, ये कृष्ण स्वयं भगवान है, आद्य सबके जन्मदाता है, आद्य नारायण कुमार, ये आदि नारायण है, ये श्री कृष्ण आदि नारायण है, और ये प्रकृति के अंतर्जामी कारणोदक साई भगवान भी यही है। समस्त ऋषियों के सभा में अकस्मात कृष्ण के विषय में इस तरह से बोलना, ये बहुत बड़ी बात थी। कुछ ऋषि मुनि जो नए गए होंगे शिष्य, वो तो सब सुनकर चकित हो गए होंगे, ये साक्षात भगवान है, ऐसे तेज तो देख ही रहे थे, लेकिन तेज के बाद कृष्ण की जो लीला थी वो भ्रम पैदा कर रही थी। जैसे भीष्म पितामह के चरण छूना, उनके चरणों के पास बैठ जाना, हाथ जोड़ करके सुनना, ये लीला बिल्कुल विपरीत थी। साक्षात भगवान क्यों ऐसा करेगा? जिसके भक्त हैं भीष्म पितामह, वह जाकर भीष्म पितामह को प्रणाम करे, तो कुछ शिष्यों के मन में डाउट हो रहा था, बड़े बड़े ऋषि और गुरु जो थे उनके मन में तो कोई संदेह नहीं था, वो तो सब जानते थे कृष्ण भगवान, और वहां लाखों लोग भरे पड़े थे, और भीष्म पितामह सबके सामने उंगली से दिखा करके कह रहे हैं, ऐसा वही भगवान साक्षात, ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, यही है
नारायण, यही है आदि पुरुष, इस तरह से कह रहे हैं। और मोहिन माया लोकम गूढ़श्चरत विश्लेष, तो वही लीला का समाधान कर रहे हैं कि अपनी माया से लोक को मोहित करते हुए जदुवंशियों के बीच छिप करके विचरण कर रहे हैं, अपने को वृषवंशी कह रहे हैं। अपने अगर इनसे कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो भगवान कभी नहीं कहते थे कि मैं परब्रह्म। मुचकुंद महाराज ने पूछा कि आप कौन हैं, मुचकुंद महाराज जब जगे थे गुफा में तो पूछते हैं कि आप कौन हैं, इतना तेजस्वी इतना सुंदर, तो कहते हैं मैं वसुदेव जी का पुत्र। और नाम पूछा उन्होंने आपका नाम क्या है, तो कहते मेरा नाम वासुदेव है, लेकिन ऐसे मेरे इतने नाम है कि उनको गिना नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल भगवान के पोज में बोला करते थे, मेरे इतने जन्म कर्म है कि गिने नहीं जा सकते। कोई पुरुष इस पृथ्वी को पीस करके इसका आटा बना करके गिनना चालू करें, जैसे लाइन लगा दिया जाए करोड़ों विद्वानों का गिनने के लिए, अपना अपना कंप्यूटर लेकर के बैठे भगवान शिव सरस्वती ब्रह्मा जी शेषनाग, ये सब हो सकता है कि पृथ्वी की धूली को गिन दे। यदि असंभव है लेकिन हो सकता है कि गिन दे, लेकिन मेरे जन्म कर्म को कोई नहीं गिन पाएगा, इतने मेरे जन्म कर्म, भगवान इस तरह से बोले। लेकिन फिर भी कहते हैं कि वर्तमान मेरा यदि आप पता एड्रेस लेना चाहते हैं तो मेरा घर मथुरा है, मेरे पिता वसुदेव जी, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। भगवान इस तरह से बोले, तब तो मुचकुंद महाराज समझ गए कि वो ये तो हमारे इष्ट देव भगवान नारायण, स्तुति करने लगे। तो समय समय पर महान लोगों के सभा में इस बात की घोषणा होती थी, कृष्ण स्वयं भगवान परब्रह्म, राष्ट्रीय जग में घोषणा हुई थी। सहदेव जी ने खड़ा होकर के सबके सामने कहा था कि ये श्री कृष्ण भगवान परब्रह्म है, और सबसे पहली पूजा इनकी होनी चाहिए। इनकी पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है, जैसे वृक्ष के जड़ में पानी देने से वृक्ष के शाखा प्रशाखा फल फूल सब में पहुंच जाता है जड़, तो कृष्ण की पूजा की जाएगी सबकी पूजा हो जाएगी। तो वहां भी बहुत बड़ा प्रचार, उस समय पूरे विश्व के ऋषि मुनि आए, यहाँ विश्व का सबसे बड़ा ज्ञानी भीष्म पितामह प्रवचन कर रहे, वहां तो प्रवचन नहीं किए, तो घर के थे, अपने घर के थे, कृष्ण के संबंधी थे, नारद जी वहां वक्ता थे राष्ट्रीय सभा, लेकिन यहाँ भीष्म पितामह खोल करके कह रहे हैं। इसकी वास्तव में आवश्यकता है, कृष्ण के विषय में आज भी बहुत संदेह है लोगों को, और कुछ लोग तो इतने बुद्धू हैं कि वो कृष्ण को जानते नहीं, दूसरे की शरण ले रहे हैं, किसी आदमी को भगवान कह रहे हैं, ये भगवान है, ये आशीर्वाद दे दिया, ये कर दिया, क्या आशीर्वाद दे देगा, क्या कर देगा, जो लिखा है ललाट में उसको कोई आदमी मिटा नहीं सकता, जो होने वाला है मिलने वाला होता है उसी को कोई कह देता है ये मिलेगा, तो आदमी समझता ओ इसने दिया, तो इसने दिया, कोई नहीं दे सकता। अगर कोई दे रहा है आप देखिए पूछिए उससे, यदि समर्थ है तो अपने को मृत्यु से बचा क्यों नहीं रहा, क्यों बूढ़ा होता जा रहा है, यदि वो समर्थ है उसका दिया हुआ राख यदि आपको सुखी कर रहा है तो वह अपने को क्यों नहीं बुढ़ापा से बचा रहा है। बुढ़ापा छोड़ दीजिए, उसको रोग होते हैं और डॉक्टर को हाथ दिखाता है, डॉक्टर साहब परेशान हूं, बारे भगवान परेशान हो गए हैं, दांत के दर्द से भगवान परेशान हो गया था। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, जिसके विषय में कहते हैं उसके उल्लू चेला लोग कहा करते हैं कि हमारा गुरु भगवान है ये है, वो डॉक्टर के पास जाकर के आहा कर रहा था, और कहा कि ऐसी दवा दीजिए, तो उस डॉक्टर ने कहा कि भगवान जी आपका दांत उखाड़ना पड़ेगा, ये दशा हो भगवान बिना दांत के हो, इस तरह के गधे को भगवान कहा जाता है। भगवान है कृष्ण श्री राम और विष्णु, और कोई भगवान नहीं, इतना मान करके चलिए। वास्तव में आप लोग भीष्म पितामह का प्रवचन किसी एक ऑफिस में और कोने में नहीं हो रहा है, आप सुन ही रहे, पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण, सभी ऋषि मुनि जहां जुटे हैं वहां कह रहे हैं कृष्ण भगवान। और ये जदुवंशियों में छिप करके किसी का भतीजा बने हुए हैं, किसी का पुत्र बने हुए हैं, किसी का कुछ बने हुए हैं, ये लीला कर रहे हैं युधिष्ठिर, इस बात को तुम समझो। और अस्य अनुभावम, भक्तों के साथ इनके जो प्रेम की लीला है, इस रहस्य को भगवान शिव जानते हैं। तो शुरू में कह दिया भीष्म पितामह ने कि इनके रहस्य को कोई नहीं जानता है, बड़ा कठिन है। तब इस पर युधिष्ठिर महाराज को कुछ अच्छा नहीं लगा, जब कोई नहीं जानता है तो फिर क्या वैल्यू रहा। तब कहते हैं अस्य अनुभावम भगवान वेद गुह्यतमम शिव, इनके गुह्यतम अनुभव को भक्तों के साथ जो इनका प्रेम है, व्यवहार है तुम लोगों के साथ, इस रहस्य को भगवान शिव जानते हैं। कृष्ण को जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ है भगवान शिव, वो पूरा पूरा जानते हैं कृष्ण। और देवर्षि नारद साक्षात, देवर्षि नारद भी जानते हैं, वहीं पर देवर्षि नारद बैठे हैं। कहते हैं बेटा ये तुम्हारे गुरु देवर्षि नारद जी जानते हैं इनके विषय में, लेकिन सब जगह कहने की आवश्यकता क्या है, ये जानते हैं। और भगवान कपिलो नृप, हे राजन भगवान कपिल देव जानते हैं, तीन का नाम बोल रहे हैं कि तीन जानते हैं, इसके साथ इनकी परंपरा में आने वाले सभी जानते हैं। यदि शुद्ध परंपरा में हो तो हम लोग भी जान जाएंगे कृष्ण भगवान परब्रह्म, और भक्तों के साथ जो इनकी लीलाएं हो रही उसके मर्म को समझ जाते हैं। रहस्यानुभावम भगवान वेद गुह्यतमम शिव देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिलो नृप। फिर कह रहे हैं जनमन्य से मातुलेयम युधिष्ठिर, बेटा जिसको तुम अपने मामा का पुत्र समझते हो, जनमन्य से मातुलेयम, मातुल का पुत्र जिनको मानते हो, अपने मामा वसुदेव जी का पुत्र मानते हो, और अपना सबसे प्रिय बंधु जिनको मानते हो, मित्र मानते हो, हित करने वाला, और सुहृत्तमम, अकरो सचिवम दूतम, यहां तक कि तुमने इनको अपना सचिव भी बनाया, इनको अपना दूत बनाया, और सौहार्द बस सारथी तक बना लिया। ये कृष्ण भगवान है, इसका पहले से अन्वय, जिनको तुम अपने मामा का पुत्र मानते हो, मित्र मानते हो, सौहार्द बस दूत बनाए, सारथी तक बनाए, ड्राइवर तक बना लिए, ये भगवान है बेटा। और कोई भी कर्म करे तो इससे इनका महत्व घटता नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि पितामह जब ये भगवान है, ईश्वर है, तो नीच कृष्ण कोई भी काम करे उनके लिए ना कोई छोटा काम है ना उनके लिए कोई बड़ा काम है। हम लोगों के लिए कोई छोटा काम होता है, अरे पाप है, ये है, वो है, बंधन हो जाएगा, और कुछ काम करते हैं तो सराहना होती, वाह ग्लोरियस काम है, बहुत बड़ा काम। लेकिन श्री कृष्ण कौन ऐसा काम करे कि उनकी बड़ाई होगी, उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं और उनके लिए कोई छोटा काम नहीं। ये तो सुअर के भी हृदय में रहते हैं लेकिन वे अपवित्र नहीं होते, मल में जो कीड़े रहते हैं उनके हृदय में भी भगवान है और ब्रह्मा जी के भी हृदय में भगवान है। तो ये अगर सारथी का काम करें फिर भी भगवान भगवान। एक नीति श्लोक में कहा गया है कि यदि गरुड़ जी किसी पर्वत के नीचे बैठे फिर भी गरुड़ जी हैं, और कौवा सुमेरु पर्वत के शिखर पर बैठ जाए फिर भी कौवा कौवा है ना। और गरुड़ जी अगर नीचे बैठे हो तो उससे छोटे नहीं हो जाएंगे, और छोटा व्यक्ति कौवा यदि सुमेरु पर्वत के शिखर पर बैठ जाए तो गरुड़ नहीं हो जाएगा है ना। तो मान लीजिए एक बच्चा है वो आकर के यहां बैठ जाए तो इसका अर्थ ही नहीं कि वो अब वक्ता हो गया भागवत, और भागवत को समझने वाले विद्वान लोग नीचे बैठे तो इसका अर्थ ही नहीं कि वो नहीं जानते कुछ। तो श्री कृष्ण इस पोजीशन में है कि वो छोटा काम करे जगत की दृष्टि से या बड़ा काम करे, वो छोटे बड़े नहीं होते हैं। सूर्य भगवान मल मूत्र को भी सुखाते हैं अपने किरणों से,
मल मूत्र पड़ा रहता है उस पर भी किरण पड़ती है, सुखाते हैं। और फूल के बगीचे को भी सुखाते हैं, चंदन का रस होगा उसको भी सुखाएंगे। लेकिन भगवान सूर्य में कोई कमी बेसी नहीं होती। और ना भगवान सूर्य ये सोचते हैं कि ये बहुत गंदा स्थान है, जल्दी जल्दी भागो यहां से। और पुष्प वाटिका है तो दो पहर किए रहो, टक्सो मत इधर उधर, यहीं पड़े रहो, वो नहीं सोचते। गंगा जी में शुभ और अशुभ जल सब तरह के बात है, लेकिन फिर भी गंगा जी पावन है, कभी अपवित्र नहीं होती। शुभ और अशुभ सलिल सब बहे, सुरसरी को अपनी तन कहे। बल्कि सुरसरी में गट्टर का जल जाता है तो वो भी गंगा जल हो जाता है। बनारस में हम लोग देखें कितनी नलियां गंगा जी में गिरती हैं, लेकिन राजघाट जो गंगा जी के अंतिम छोर पर पड़ता है, वहां का पानी या चाहे अस्सी घाट का पानी, दोनों एक समान पवित्र, कोई अंतर नहीं। जबकि लाखों लीटर पानी रोज गिरता होगा, नली का गटर का पानी गिरता, वो सारा पानी गंगा हो जाता है। गंगा जी के संग से वो गंगा हो जाता है, गंगा जी नाली नहीं होती। तो श्री कृष्ण तो रथ हाँकने की बात छोड़ दीजिए, वो तो युद्ध छोड़ करके भाग गए, फिर भी ग्लोरियस रण छोड़ जी लोग। कोई रण छोड़ करके भागेगा तो उसकी पूजा करेंगे लोग, गाली देंगे, कायर है, भीरू है, लेकिन युद्ध छोड़कर भागे तो रण छोड़ जी लोग, उनकी पूजा होती है। और वे यदि माखन चुरा दिए तो माखन चोर शाम से पाते पूजा भी करते हैं, और रोज लोग भोग लगाते हैं माखन का कृष्ण को देते, बल्कि मनोरथ करते हैं, कृष्ण हमारा चुरा करके खा जाओ, हमारा खा जाओ, मनोरथ करते हैं। तो श्री कृष्ण चाहे सारथी का काम करें अथवा राजस्वीय सभा में अग्र पूजा ग्रहण करें, अग्र पूजा ग्रहण करने से न तो वे बड़े हो गए और न तो रथ हाँकने से छोटे हो गए, यह इनकी लीला है। तो इस प्रकार से जो सम है, फिर भी जब तक मैं शरीर नहीं त्यागूंगा तब तक ये यही रहे, ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से भीष्म पितामह। मैं चाहता हूं कि ये मेरे सामने रहे, हंसते हुए पीताम्बर पहरता रहे और मैं इनको देख करके शरीर त्याग। ये सब कथाएं बाद में आएंगी। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।